الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ اپنی کتاب تجلیات نبوت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج دیکھیں گے، اور یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. پیج نمبر 334 ہے میری بک میں، آپ لوگ بھی نکال لیجئے. دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں، اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے. یعنی عرب لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے سچے فالوور سمجھتے تھے، کیونکہ وہ سوچتے تھے ہم حج وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور حج تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی شروع کیا تھا فرسٹ ٹائم، اور اس وقت سے چل رہا تھا حج. ایسا نہیں تھا کہ حج ختم ہوا ہو، تب سے حج کی یعنی ایک یہ عبادت موجود تھی، مگر اس کی شکل بالکل بدل چکی تھی. اب وہ حج نہیں ہوتا تھا جیسا کہ شروع کیا گیا تھا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حج میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی تھیں. چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں اور بدعتیں بھی داخل کر لی تھیں. اور وہ کون سی تبدیلیاں؟ آپ کو پتا ہے کہ بت پرستی تو تھی ہی، مگر اس کے علاوہ ایک بہت بڑی چیز جو انہوں نے شامل کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا طواف ننگے ہو کے ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو کپڑے ہیں یہ گناہوں سے ناپاک ہو چکے ہیں، تو اب ہم کپڑوں میں نہیں کر سکتے طواف، یا تو قریش سے کپڑے بورو کرتے اور پھر کرتے تھے، یا پھر ننگے ہو کے کرتے تھے. عورتیں بھی تھوڑا سا اپنے پرائیویٹ پارٹ کے آگے بس ذرا سا پیچ ڈال لیتی تھیں، اور وہ بھی بالکل ننگی طواف کرتی تھیں. اتنی بے حیائی کا کام تھا، اور ان کے طواف سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھا. اور اسی طرح عرفہ میں قریش جو تھے وہ نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں بس ٹھہرتے تھے، اور وہیں بس تجارت وغیرہ کی اور مڑ کے آ گئے. وہ کہتے تھے اس سے آگے جانا ہمارا کام نہیں. اسی طرح قریش ننگے ہو کے نہیں کرتے تھے، یہ باہر والے لوگ ننگے ہوئے کرتے تھے. قریش تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. تو دیکھیں کیسی کیسی خرافات دین میں انہوں نے شامل کر لی دین کا نام لے کے، اور یہی سب سے بری چیز ہوتی ہے کہ جب دین کا نام لے کے کوئی چیز کی جائے. ایک برائی ہوتی ہے، کوئی بری چیز ہے، کوئی برا کام کوئی کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے لیکن بس مجھ سے رہا نہیں جا رہا میں کر رہا ہوں. ایک کام ہوتا ہے کہ برائی کو بھلائی کہہ کے پھر کرنا، وہ ورسٹ ہے. اللہ تعالی نے کہاں حیا کا ہمیں حکم دیا ہے، حیا کرنے کا حکم دیا، اور کہاں یہ اتنی بے حیائی کا کام کہ اللہ کے گھر کا طواف ہی ننگے ہو کے کرنا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، آپ کو یاد ہے نا 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ کون سے منتھ میں؟ رمضان میں. اور عتاب بن اسید کو اس کا امیر مقرر کیا. آپ کو پتا یہ لوکل تھے، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ کافی ینگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ینگسٹر کو وہاں کا امیر مقرر کیا، ان کو چانس دیا. لیکن بڑے بڑے صحابہ بھی تو تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ہیں، علی ہیں، یہ سب بھی تو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کیا تھا پھر، ان کو کیوں نہیں دیا گیا کہ وہاں کا جو امیر ایک والی ان کو بنایا جاتا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے بات؟ تو یہ بات ایک یاد رکھنے کی ہے کہ ان دونوں یا ان تمام صحابہ جو مہاجرین تھے، ان میں سے کوئی بھی مکہ میں سیٹل نہیں ہو سکتا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ حالانکہ تو یہ تو وہیں کے سٹیزنز تھے، وہیں کے بورن اینڈ ریز تھے. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہ ہجرت کر چکے تھے، اور اب ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر یہ واپس وہاں جا کے سیٹل ہوتے ہیں تو ان کی ہجرت کا اجر ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کی ہجرت نلیفائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی بھی ان میں سے وہاں کا امیر نہیں مقرر کیا گیا. हाँ, तो इस साल इन्हीं की अमारत में, यानी वो अमीर बने थे हज के, जो उनका वहां के मुसलमान थे उनके अमीर वो थे, और उनकी अमारत में मुसलमान और मुशरिकीन सब ने हज किया। यानी ये ऐसा मौका था कि मुसलमानों ने भी हज किया और मुशरिकीन भी हज के लिए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हज में शामिल नहीं थे। और वजह क्या थी? अभी नया नया मक्का फतह हुआ था, आपको पता है कि उसके बाद ताइफ की तरफ गए और किस तरह वहां पे मुसलमानों ने मुहासरा किए रखा, फिर उसके बाद माले गनीमत जैसे तकसीम हुआ और फिर काफी उसमें दिन लगे थे, फिर भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो शिरकिया चीजें हो रही थी वो सब अभी खत्म करने की जरूरत थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिखाना था मुसलमानों को कि हज के अरकान कैसे होते हैं इस्लाम में, और ये अभी मुमकिन नहीं था, अभी उनकी वो तरीके चले आ रहे थे। और आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसी वक्त जब मक्का फतह हुआ था तो सब कुछ खत्म कर देते, बैन कर देते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों को टाइम दिया, मौका दिया, एकदम से चीजों को नहीं पलटा दिया। ठीक है, तो अभी सबने हज किया था जैसे कि वो जाहिलियत में हज करते आ रहे थे, कोई चीज तब्दील नहीं की गई। ठीक है, अभी तक एज इट इज ही हज हुआ, ठीक है, जैसे वो लोग करते थे पुराने जमानों में। लेकिन अगले साल 9 हिजरी का हज आया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हज इस लिहाज से है कि आप देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हज का अमीर बनाकर भेजा। कहाँ से भेजा था? मदीना से। ठीक है, कि वही लोगों को हज कराएं। वो ज़ीक़ादा 9 हिजरी के अवाखिर में, यानी उसके एंड में, ज़ीक़ादा के एंड में 300 अहले मदीना के साथ रवाना हुए। अब इसमें बड़े बड़े कबायर सहाबा भी थे, वो भी साथ हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी अहकामात भी दिए। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हज है कि इसके बाद अब कभी भी मुशरिकीन हज नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हज है। इसमें इस चीज की अनाउंसमेंट हुई थी। तो अब देखते हैं, इनके साथ कुर्बानी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 और अपने 5 ऊंट थे। इसके बाद जब वो यानी रवाना हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा के साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना कर दिया हज के लिए अमीर बना के। ठीक है, अब जब वो रवाना हुए तो क्या हुआ कि उनके पीछे से क्या हुआ? इसके बाद सूरह बरात की इब्तदाई आयात नाजिल हुई। और सूरह बरात की वो कौन सी इब्तदाई आयात है? आपको पता है सूरह बरात कौन सी है? सूरह तौबा। सूरह तौबा जो 9th सूरह है, वो स्टार्ट कैसे होती है? बरातु मिन अल्लाही व रसूलिही, के बरी जिम्मा हो गए। अभी बरी जिम्मा होने का ऐलान हो गया अल्लाह और उसका रसूल। इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, किन से बरी जिम्मा हुए? वो मुशरिक जिनसे मुआहदे किए हुए थे उनसे अब बरी जिम्मा हो गए, यानी मुआहदों का की कैंसलेशन का ऐलान आ गया। तो पहली आयात देखते हैं आप, निकाल लीजिए कि अल्लाह तआला ने फरमाया वो मुशरिक जिनसे तुमने मुआहदे किए थे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इन मुआहदों से बरी जिम्मा होने का ऐलान किया जाता है। इन मुशरिकों को जमीन पर 4 माह तक खुले फिरने की मोहलत दी जाती है। यानी ऐसे है ना जैसे कोई मुनादी की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है। इन्हें जान लेना चाहिए कि ये अल्लाह को नीचा नहीं दिखा सकते और इनको अल्लाह ही जिल्लत से दोचार करने वाला है। बहरहाल हज अकबर का जो दिन है, इस मौके पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से वाज़े ऐलान है, तुम लोग आगाह हो जाओ, तमाम लोग आगाह हो जाएं, अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बरी जिम्मा है। अगेन वही वाली बात आई, अब भी मुशरिक शिर्क से तौबा कर लें तो ये तौबा तुम्हें फायदा दे जाएगी, और अगर तौहीद से मुंह मोड़े रहोगे तो ये तो तुम्हें मालूम ही है कि फिर तुम अल्लाह को तो झुकाने से रहे। ए नबी, इन नाशुक्रे लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दें। अब आप देखें कि क्या ऐलान हुआ है ये पीछे, इन ये आयात उतरी हैं सूरह तौबा की जिनमें ये ऐलान हो गया जो यहाँ पे आया है, देखते हैं बुक में से, जिसमें इन तमाम मुशरिकीन से अहद तोड़ने का हुक्म था। कौन से मुशरिकीन से? नंबर वन, यहाँ पे वन लिख लें, जिन्होंने अपने अहद की पासदारी नहीं की थी। यानी मुशरिकों की आदत थी कि अहद करते थे फिर तोड़ देते थे, फिर अहद करते थे फिर तोड़ देते थे, ये उनका यानी तरीका था, अहद के पाबंद तो रहते नहीं थे। और उनकी और उन लोगों को जिनका सिरे से कोई अहद ही नहीं था, उनको भी 4 महीने की मोहलत दी गई थी कि इस दौरान जिस तरह चाहें जमीन में घूम फिर लें। यानी दो तरह के लोगों को 4 महीने की मोहलत दी गई। नंबर वन कौन से मुशरिकीन? वो जो अपने अहद को बार बार तोड़ने वाले थे। नंबर टू कौन से? वो जिनको जिनके साथ कोई भी अहद नहीं था। ठीक है, तो ये दो हो गए। नंबर टू यहाँ पे लिखें, इन लोगों का जिनका सिरे से कोई अहद ही नहीं था, इससे पहले नंबर टू लिख लें। ठीक है, तो 4 महीने की मोहलत दी गई थी कि इस दौरान जिस तरह चाहे जमीन में घूम फिर लें, यानी अब सोच विचार कर लो, देख लो, हालात जांच लो, ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि वो अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करके रहेगा। अलबत्ता अब ये नंबर थ्री लिखें, यहाँ पे एक और कैटेगरी भी है मुशरिकीन की। वो कौन सी है? जो मुशरिकीन अपने अहद पर कायम थे, उसे तोड़ा नहीं था और मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद नहीं की थी, यानी वो न्यूट्रल रहे थे थ्रू आउट, और जो वो अहद करते भी थे उसमें कायम रहते थे। इनका अहद पूरा करने का हुक्म दिया गया जावे कि अब से, चूंकि अब इस्लाम का गलबा आ गया था, और आप ये देख लें कि 1 साल हो चुका है मक्का को फतह हुए थे, 1 साल से भी ऊपर, अब जाके जो नई हकूमत है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट कर रही है। बाज दफा लोग सूरह तौबा लेकर और बहुत ज्यादा इस चीज को करते हैं कि देखो जी ये कहा गया, ये इस तरह से कहा गया, लेकिन ये भी तो फिर देखना चाहिए कि ऐसा कहा गया तो वो क्या सिनेरियो था। क्या जब कोई हकूमत आती है तो वो अपनी तरह के कवानीन नहीं नाफिज करती? और ये इन्हीं कवानीन का नतीजा था, 4 महीने की मुद्दत दी गई, ऐसा नहीं किया गया। देखें कि उसी वक्त हकूमतें क्या करती हैं, जब वो किसी जगह के ऊपर गालिब आ जाती हैं, फतह उनको मिल जाती है, तो वहाँ के औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, उनके साथ क्या सलूक करते हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सलूक किया था, और वहां पे किसी को फोर्स नहीं किया गया था कि कोई मुसलमान हो। जब मक्का फतह हुआ है, आपको पता है लोग अपनी मर्जी से जो भी मुसलमान हुए। अच्छा, अब उनको टाइम भी दिया गया, इतना टाइम दिया गया। अब भी जब ये आयात नाजिल हुई हैं, तो अब देखें ज़िलक़ादा का एंड है, लास्ट ईयर 8th हिजरी में रमजान में मक्का फतह हुआ था, नेक्स्ट ईयर आ गया। इस वक्त जो हुकूमत वक्त क्या है, क्या उसको राइट नहीं है कि वो अपने कवानीन नाफिज करे? आज यहाँ पे जिन मुल्कों में भी फजूल किस्म के कवानीन भी यानी डाल दिए गए हैं, लोग उनकी भी पाबंदी कर रहे हैं बगैर चूं चरा किए, लेकिन जब इस्लाम की तरफ से कोई हक की बात आती है तो इसको बहुत उछाला जाता है, और उसके बाद कहा जाता है देखो जी आगे है कि फिर इनको वरना कत्ल कर दो, फिर ये कर दो। तो वो इसलिए था कि अब इसके बाद 4 महीने के बाद अब कोई मुशरिक यहां नहीं रह सकता, यहां तो वो इस्लाम ले आए, नहीं तो फिर उसको ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर उसके साथ जंग ही है जाहिर। यानी इस जजीरा अरब में अब शिर्क नहीं हो सकता, और इसी का नतीजा ये हुआ, ये बहुत अहम बात है, एक भी कत्ल नहीं हुआ इस बात पे जो वो लेके प्रोपोगंडा करते हैं ना कि देखें ये आयतों में लिखा हुआ है कि फिर इनको कत्ल कर लो, कत्ल कर दो जहां पे पाओ ये। तो उनको टाइम दिया गया 4 मंथ्स का, उसके बाद भी ये 4 मंथ्स में वो सोच विचार लें, उन्होंने रहना है तो मुसलमानों के रहना पड़ेगा, अदरवाइज उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, मूव आउट होना पड़ेगा, विच इज फेयर इनफ। अच्छा, फिर ये भी देखें, मोहलत देने के बाद ये बात की गई है। इससे ऐसे नहीं किया गया कि फौरन से उनको उनके घरों से निकाल के बाहर कर दिया जाता, उनको सोचने का टाइम दिया गया, उनको देखने का टाइम दिया गया, और इसी का नतीजा ये असल में एक धमकी थी लोगों के लिए और बड़ी कारगर साबित हुई। क्योंकि आज आप देखें, जजीरा अरब में कोई बुत परस्ती नहीं है, कोई आप बुत परस्त अरब देखेंगे ही नहीं। क्रिश्चियन अरब हैं, यहूदी अरब हैं, लेकिन आप बुत परस्त अरब कभी नहीं देखेंगे। किस वजह से? क्योंकि ये बैन कर दिया गया कि यहाँ पे बुत परस्ती नहीं होगी, पूरे जजीरा अरब में ही नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आ गई। और ये देख लें कि चौथी आयत भी देख लें, उसका तर्जुमा देखें। इन मुशरिकों में से जो वो लोग जिन्होंने तुमसे मुआहिदा किया, फिर उन्होंने इसे पूरा करने में जरा बराबर भी कोताही नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो इनके साथ तयशुदा मुआहिदे की मुद्दत को पूरा करो। याद रखो, अल्लाह ताला परहेजगारों से मोहब्बत करता है, मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। तो इस्लाम जब फातह बन के आता है तो वो कितना जस्टिस आदलाना असूल देता है कि यानी खुद भी मुआहिदों की पाबंदी की गई, वरना कौन इस चीज की परवाह करता है। और अरब में तो ये नॉर्म था, जो गालिब आ जाता था, जो फातेह होता था, वो जो मर्जी करता था, वो कहता था मेरी चलेगी। और आज तक दुनिया में यही नॉर्म चल रहा है कि जो फातेह होता है वो थोड़ी पूछता है, अच्छा जी हम आपके साथ मुआहिदा करें, वो हमारा जो मुआहिदा है हम उसके ऊपर कायम रहेंगे। ऐसा नहीं होता, मुआहिदों की तो धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, कोई मुआहिदे का लिहाज नहीं होता, क्योंकि अब हम गालिब हैं, अब हम फातेह हैं, अब हम विनर हैं, हम जो मर्जी करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, इस्लाम ने फाते होने के बावजूद मुआहिदों को कायम रखा, और सिर्फ उनसे मुआहिदों को 4 महीने की मुद्दत दी जिनके जिन कबाइल को मुआहिदे तोड़ने की आदत थी और वो पहले ऐसा कर चुके थे। ठीक है, ये बात समझने की जरूरी है। फिर आगे देखते हैं, ये आयात यानी ये जो सूरह तौबा की आयात उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को देकर भेजी कि वो हज्जे अकबर के दिन इसे लोगों तक पहुंचा दे। हज्जे अकबर किसको कहा जाता था? हज्जे अकबर ये नहीं है जो आप कहते हैं कि जुमे का दिन आ गया तो हज्जे अकबर हो गया। असल में वहां पे उमरे को हज कहा जाता था, और जो हाज होता था जिसको हम हज कहते हैं उसको हज्जे अकबर कहते थे। ठीक है, तो हमने ये बना लिया वह खुद ही के जुमे के दिन का हज अफजल है, या वो हज्जे अकबर है, या ये बड़ी वो है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हज्जे अकबर के दिन उसे लोगों तक पहुंचा दें। हजरत अली को ही क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूज किया? फरमाया, मेरी तरफ से मेरा ही आदमी ऐलान करेगा। यानी उस जमाने में क्या होता था कि अगर कोई अहम आदमी, कोई यानी पोजीशन ऑफ पावर में आदमी होता था, तो या तो वो कोई ऐलान खुद करता था, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता था। या जैसे बादशाह है, तो बादशाह अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो उसके खानदान का हो उसको कहेगा कि वो आगे पैगाम उसका पहुंचाए। और यहाँ पे मामला आप देख लेना मुशरिकीन के साथ था, और मुशरिकीन तो खानदान को ही समझते थे, उनको और चीजों की समझ नहीं थी कि क्या होती है। तो इसलिए कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि यानी या तो मैं खुद ऐलान करूं या मेरे खानदान का ही कोई ऐलान करे, ताकि वो फिर आगे से एतराज ना करें कि हम तो इसकी बात ही नहीं सुनते, हम नहीं मानते, ये कौन होता है कि जो हमें बताएगा। तो ये मामला बड़े सेंसिटिव थे ना, क्योंकि आपको पता है अभी भी वास्ता पड़ रहा था मुशरिकीन से, जो जहालत वाली जिंदगी अभी भी गुजार रहे थे, वही कबायली हमीयत, वही वो, उनको ईमान और इन चीजों का थोड़ी पता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी ऊंटनी दी थी हजरत अली को, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी लेकर गए थे। और किसी की ऊंटनी के ऊपर होने का मतलब क्या होता था कि ये यानी उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के आया। तो चाहे तोड़ना है मुआहिदा, चाहे किसी के कोई अहम ऐलान करना है, चाहे कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज करनी है, तो जो भी सरदार होता था वो अपने खानदान के किसी बंदे को भेजता था कि वो जाके ये बात आगे तक पहुंचाए। ठीक है, ये बात यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात, जुजनान या अरज में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई, यानी आपको पता है वो तो निकल चुके थे, तो ये पीछे से जाके उनसे मिले उस इलाके में। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा, अमीर हो या मामूर, यानी आप अब आप पहले कौन है, अमीर अबू बकर सिद्दीक है, आप अमीर बन के आए हो, अमीर बना के भेजे गए या मामूर, मामूर मतलब है कि आप सबॉर्डिनेट। तो अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा मामूर, चुनाचे वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पीछे नमाज पढ़ते रहे। अब आप यहां पे जरा देर के लिए सोचिए कि एक पोजीशन आपको मिली हो और आपके पीछे किसी और को भेज दिया जाए कि नहीं अब आप नहीं है, ये अब कुछ भी प्रेसिडेंट बनेंगी या ये अब ये ट्रेजरर होंगी या ये इंचार्ज होंगी सारे इस चीज की काम की, कितनी जल्दी आप पावर सबमिट करने को तैयार होते हैं? पावर या पोजीशन, कुर्सी, कुछ भी कह लें, कितनी जल्दी देने को तैयार होते हैं? यहां से सहाबा कराम का पता चलता है कि उनको पोजीशंस लेने का क्रेज नहीं था जैसे कि आज हमारे यहाँ, हुब्बे जाह उनके अंदर नहीं थी। हुब्बे जाह क्या होती है? यही कुर्सी, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी हाथ में रखना, मेरे हाथ में हो। आप देखिए छोटी से छोटी जगह पे भी आप देख लें, यानी आप कोई छोटा सा इदारा देख लें, घर देख लें, यानी सबसे जो छोटी कोई एक गवर्निंग बॉडी हो उसको आप ले लें, कोई बड़े मुल्कों की बात नहीं कर रहे, उसमें भी इवन मस्जिदें देख लें, स्कूल देख लें, उसमें भी किसी और को पावर ट्रांसफर करना लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है कि हैं, पहले तो मैं था, मेरी जगह पे कौन आके रह सकता है, मैं ही बेस्ट काम करती हूँ, ये कैसे हो सकता है कि कोई और करे। आप ये भी देख लेते हैं कि लोग ये तक करते हैं कि कुछ लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, ये जी इसके फैन है, वो उसके फैन है, वो उसके सपोर्टर है, वो उसके सपोर्टर है, आपस में लड़ लड़ के, झगड़ झगड़ के क्या हाल हो जाता है। हर कोई चाहता है कि मुझे मिल जाए बस ये पावर। यहाँ पे उनको अमीर बना के भेजा जा रहा है हज का, छोटी बात नहीं है। बाज दफा हम इसमें भी नेकी के नाम पे कहते हैं, नहीं जी मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये नेकी की, मेरे से क्यों छिन जाए ये मेरी नेकी का मौका। बात ये नहीं होती, अंदर कहीं हुब्बे जा ही होती है, अंदर कहीं हुब्बे जा ही होती है। वरना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहते कि आई ये नेकी का मौका मुझसे छिन जाएगा, मैं तो डिप्रेस हुई हूँ, मैं कैसे पूछ लूँ। खुद पूछ रहे हैं अमीर हो या मामूर, आने अगर तुम अमीर बना के बेचे गए हो तो 100 दफा फिर तुम ले लो, अगर मामूर हो तो फिर ठीक है। तो फर्स्ट यानी इस बात को क्लियर उन्होंने किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे बन के आ रहे हो, उन्होंने किस हैसियत में आपको भेजा है। इससे हमें बहुत ज्यादा सबक सीखने को मिलता है कि इवन नेकी के काम में भी, कोई आप भलाई का काम भी कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद की हो, चाहे आप किसी इदारे में हो, कहीं कोई टीचर हो, कहीं कोई जीपीएल हो, कहीं कोई इंचार्ज हो, एक दिन अगर आपको कह दिया जाता है कि नहीं आप नहीं अब ये काम करेंगे, कोई और करेगा, तो इसके ऊपर बहुत वावेला खड़ा करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर ये नहीं हाय मुझे नहीं इस काबिल समझा, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, पहले मुझे बताएं मैंने क्या किया, मैंने कुछ गलत किया, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं सवाल किया, मैं कुछ गलत करा था आपको क्यों पीछे भेजा। नहीं, उनको इन चीजों की नहीं परवाह होती थी। हम इसी के ऊपर इतना झगड़ते हैं और कहते ही हैं कि नहीं असल में नेकी से जो मैं महरूम हूँ, तो क्या नेकी एक सिर्फ वो ही रह गए? असल पीछे देखा जाए तो वाकई हमारे अंदर पोजीशन की चाहत होती है, टाइटल्स, मुझे कोई टाइटल मिल जाए, कोई मैं आम उसमें ना रहूं, मैं कोई बस ऊपर हूं किसी से, कहीं इंचार्ज बन के जाऊं। वो भी तो इंचार्ज थे, हज के कारवां के इंचार्ज थे, उन्होंने तो नहीं ये बोला, वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू कर देते और हजरत अली शुरू कर देते, वो कुछ कहने लगते, वो कह देते कि नहीं मैं तो अमीर ही बना के भेजा गया, मैंने तो इतना अहम काम करना है, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा हमारे लिए इसके अंदर सबक है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को हज कराया, जब 10वीं तारीख कुर्बानी का दिन आया तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमरा के पास खड़े होकर लोगों पर सूरह बरात की इब्तदाई आयात पढ़ी, जिसमें अहद तोड़ने, मोहलत देने और पाबंदी करने वालों का अहद पूरा करने का हुक्म है। और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ लोगों को भेजकर ये मुनादी कराई कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और ना कोई नंगा आदमी बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है। अब इसको हम देखते हैं अपनी हदीस की किताबों से भी। मैं ये किस्सा आपको बता दूं, क्योंकि ये मुसनद अहमद में भी आया, तिरमिजी में भी आया है कि हजरत जैद बिन असी ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, आपको हज के मौके पर जिस ऐलान के लिए रवाना किया गया था वो तो बताएं। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगाह किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू बकर सिद्दीक के हमरा हज के मौके पर भेजा तो चार चीजों का ऐलान करने के लिए भेजा। चार चीजें कही गई थी। नंबर वन ये कि जन्नत में मोमिन के सिवा कोई दाखिल नहीं होगा। ये उस वक्त ही बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी कि जो इस्लाम ने उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा है, उनको पहले नहीं इन बातों का इल्म था। और अफसोस से कहना पड़ता है, हम जो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें भी नहीं इन बातों का इल्म, और हम भी ये समझते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, सभी ठीक है, तमाम मजाहब ठीक है, किसी को गलत ना पाओ। वो बेचारे भी तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, वो सारे ही जन्नत में चले जाएंगे, तो फिर कैसे काम कैसे हक हो गया और वो कैसे बातें लोग हैं, वो तो सब एक ही है ना। तो इसलिए इस बात को जहन से निकाल दें कि सभी ठीक है, ऐसा नहीं है, सिर्फ इस्लाम सही रिलीजन है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो इस्लाम के अलावा कोई दीन लेकर आया तो उससे कबूल नहीं किया जाएगा, ये सूरह आले इमरान में। नंबर टू, नंगा होकर काबे का तवाफ कोई ना करे। नंबर थ्री, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिसके दरमियान मुआहिदा है वो सिर्फ मुआहिदे की मुद्दत तक है, यानी इसकी एक्सटेंशन नहीं होगी, अगर 6 महीने का 8 महीने का तो उसके बाद उसका रिन्यूअल नहीं होगा। और जिसके साथ कोई मुआहिदा नहीं है उसके लिए मोहलत का अरसा 4 महीने का। और नंबर फोर ये कि इस साल के बाद मुशरिक और मुसलमान मिलकर हज नहीं करेंगे, मुशरिक इस साल के बाद हज पे नहीं आ सकते। तो हज़रत अली ने हज के मौके पर ये ऐलानात अरब दुनिया को बता दिया। और उस वक्त आपको पता है कि हज के लिए दूर दराज से उस जमाने में भी लोग आया करते थे, और शिर्क और फहाशी का खात्मा कर दिया, और जो बाकी मुशरिकीन थे उनकी चौधराहट भी खत्म हो गई इससे। जाहिर है अब तो कोई आ ही नहीं सकता हज के लिए ऐसा जो मुशरिक हो, तो फिर सोचें कि यानी उनका तो बिल्कुल उनकी यहाँ से पावर खत्म। तो जजीरा अरब जिसके मशरकी हिस्सों में आप देखें, ईस्ट में मजूसी सुपर पावर का कंट्रोल था और वेस्ट की तरफ ये सारे सलीबी लोग थे, और इधर सारे कबाइल थे जो हुक्मरान थे, बेशुमार कबाइल थे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम जजीरा अरब की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक परचम तले सब मुत्तहिद हो गए थे। अब देखते हैं आगे, वफूद मुबल्लिगीन और दीगर उम्माल। कुरैश और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कशाकश बरपा थी, अरब इसके नतीजे का इंतजार कर रहे थे। क्या कशाकश थी? एक खेंचातानी किसी की कैफियत थी ना, तो वो कह रहे हैं कि मैं नबी हूं और तौहीद का पैगाम दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं जी हमारे बुत ही सही हैं। तो एक टसल चल रही थी और ये नतीजे का इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं अब ऊंट किस करवट बैठता है। इनका अकीदा था कि बातिल कुव्वत और फतह के जरिए मस्जिद हराम पर कब्जा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वो पहले देख चुके थे असहाबे फील का अंजाम, उनके साथ क्या हुआ था, तो उनको पता चल गया कि ये जो बातिल कुव्वत होगी वो इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती, वो इस जगह को फतह नहीं कर सकती। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ुबिल्लाह अगर बातिल है तो वो भी नहीं कर सकेंगे। असहाबे फील का वाकया ज्यादा दूर की बात नहीं थी। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में दाखिले का शर्फ बख्शा और कुफार पर गलबा अता फरमा दिया तो आपके रसूल बरहक होने में कोई शुबा नहीं रहा। समझ आ गई बात? यानी वो तो समझते थे ना जो काबा का मुतवल्ली होगा वो वही होगा जो हक पे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के घर की जो तवल्लियत है वो किसी ऐसे को मिल जाए जो बातिल कुव्वत हो। आज भी आप देखें हमें ये बात नहीं समझ आती और हम कहते हैं कि उनका तो अकीदा गलत है, हम तो हमारा अकीदा सही है उनका गलत है। ठीक है, उनमें गलतियां हो सकती हैं लेकिन अकीदे को कह देना कि उनका अकीदा गलत है हमारा सही है, फिर क्या गलत अकीदे वालों को अल्लाह ताला ने अपने घर की तवल्लियत दी है? ये तो उन लोगों को भी पता था 1400 साल पहले कि कोई बातिल कुव्वत इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। और ये आज हमारे मुसलमान उनको बातिल कह के उनके पीछे बाज तो ऐसे हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ते, बाज उनको ही बुरा भला कहते हैं और कहते हैं वो सही नहीं हम सही हैं जिस किस्म के हमारे अकायद हैं बिदात पे मुश्तमिल। तो चुनाचे फतह मक्का के बाद आपकी खिदमत में आने वाले अरब वफूद का तांता बंद गया। अब क्यों आ रहे थे वफूद? क्योंकि अब पता चल गया ना कि हक पर कौन है। जो आपकी रिसालत पर ईमान लाते और आपकी इताअत का इकरार करते थे इसी तरह लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होने लगे और थोड़े ही दिनों में इस्लामी हकूमत का रकबा यानी उसका जो एरिया था वो बहरे अहमर रेड सी जो है उसके साहिल से खलीज अरबी के साहिल तक यानी गल्फ ये सारा नीज जुनूब उर्दन और अतराफ शाम के इलाके से यमन और ओमान के साहिल तक फैल गया। यानी वहां तक इस्लाम का पैगाम फैल गया। जब वो मुसलमान हो गए तो जाहिर है वो यानी मुसलमानों के अंडर ही आ गए ना, इस्लाम की स्टेट ऑफ इस्लाम में ही दाखिल हो गए एक मुस्लिम स्टेट में। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं, एक रिवायत आती है हजरत अमर बिन सलमा से, उनका बयान है कि हम लोग एक चश्मे पर आबाद थे यानी हम वहां पे चश्मे के पास रहते होते थे जो लोगों की गुजरगाह था, वहां से लोग आते जाते काफले रुकते होंगे, हमारे यहाँ से काफले गुजरते रहते थे और हम उनसे पूछते रहते थे कि लोगों का क्या हाल है। उस आदमी यानी किसकी तरफ इशारा था? नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। उस आदमी का क्या हाल है और कैसा है? लोग कहते वो समझता है कि वो अल्लाह का नबी है, इसके पास वही भेजी जाती है, अल्लाह ने ये और ये वही की है। कहते हैं मैं ये बात याद कर लेता था, गोया वो मेरे सीने में चिपक जाती थी, यानी बस आते जाते लोग बस बता रहे हैं और उन बातों को ये याद करते गए। और अरब हल्का बगोशे इस्लाम होने के लिए फतह मक्का का इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे देखते हैं, क्योंकि कुरैश की भी वो बहुत इज्जत करते थे ना, जैसे आज भी बाज लोग सऊदी अरब को ही समझते हैं कि वो लीडर है, इसी तरह उस जमाने में भी कुरैश को वो समझते थे कि ये जाहिर है काबा के मुतवल्ली हैं, ये हज कराते हैं, ये हमारे दीन के रहनुमा हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट हैं, तो वो उनको अपना दीन में अपना लीडर समझते थे। अब अगर वो फॉल डाउन होते हैं, अगर वो गिर जाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई और जो आता है फिर तो हम उसका साथ देंगे। तो अभी वो वेट कर रहे थे ना कि किस तरफ हम हों, हम देखते हैं क्या होता है। तो फतह मक्का का इंतजार कर रहे थे, कहते थे इसे और उसकी कौम को पंजा आजमाई करने के लिए छोड़ दो, अगर वो अपनी कौम पर गालिब आ गया तो सच्चा नबी है। चुनाचे जब फतह मक्का का वाकया पेश हुआ तो हर कौम ने अपने इस्लाम के साथ मदीना की जानिब पेशरफ्त की, यानी सब मदीना की तरफ चल पड़े और मेरे वालिद भी मेरी कौम के इस्लाम के साथ तशरीफ ले गए। और जब मदीना की जानिब और जब खिदमत नबूवत से वापस आए यानी मदीना से होके वापस आए तो फरमाया मैं तुम्हारे पास खुदा की कसम एक नबी बरहक के पास से आ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां नमाज फलां वक्त पढ़ो और फलां नमाज फलां वक्त पढ़ो और जब नमाज का वक्त आ जाए तुम में से एक आदमी अजान कहे اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے. اور اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فتح مکہ کا واقعہ واز اے ٹرننگ پوائنٹ, حالات بدل گئے تھے, اسلام کو پاور مل گئی تھی, ٹھیک ہے, اور اسلام سب کے سامنے آ گیا تھا کہ حق پہ ہے. اور آپ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے لشکر لے کر گئے تھے تو کتنے ہزار کا لشکر تھا؟ 10,000 کا, رائٹ. یہ 8 ہجری میں تھا. اب 10 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا, اس وقت آپ کے ساتھ کتنے تھے لوگ, کتنے لوگ حج میں شامل ہوئے تھے؟ ظاہر سارے مسلمان ہی تھے نا, مشرک تو اب آ نہیں سکتے تھے. 1,24,000. آپ چینج کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی چینج آئی, کتنی بڑی ایک ریولوشن یہ فتح مکہ سے ہوا, انقلاب آ گیا نا, یہ چھوٹی بات نہیں تھی. تو اب کیا ہوا تھا کہ کہاں ہم پہنچے تھے بک میں دیکھیں, ساحل تک پہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے. یعنی اب آپ امپائر, آپ سوچیں اتنی پھیل گئی ہے, اب اس کو آرگنائز کرنا, اس کی ساری چیزیں ٹھیک کرنا. چنانچہ آپ نے مبلغین بھیجے. مبلغین کون ہوتے تھے؟ جو جا کے ڈفرینٹ علاقوں میں اسلام کا تعارف کرواتے تھے, اسلام کا پیغام دیتے تھے. اب آپ دیکھ لینا کہ ایک سپر پاور تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک ریلیجسلی بہت سالڈ جگہ پہ مسلمان بیٹھ گئے تھے, کوئی معمولی بات نہیں تھی. اب وہاں سے جب وہ کوئی بات بولیں گے, جب آپ پوزیشن آف پاور سے کوئی بات بولتے ہیں نا, تو اس کی ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. اور جب آپ کچھ بھی نہیں ہوتے اور آپ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں ہوتے تو پھر کوئی سنتا ہی نہیں. اب لوگ سنیں گے نا کہ کہاں سے آ رہا ہے, کس کا نمائندہ ہے. اب ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے, تو ایک اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے لوگ جاتے تھے. صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا, اور بندوں اور شہروں کا نظام جن قدرات اور اعمال کا محتاج ہوتا ہے, یعنی جو گورنر وغیرہ جو وہاں کے اور دیکھنے والے ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں, ان کا محتاج ہوتا ہے, انہیں فراہم کیا. آئندہ سطروں میں ہم انشاءاللہ حسب ضرورت ان سب کا ذکر کریں گے کہ کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین کو بھیجا تھا, کیسے لوگ گئے تھے. اور یہ جو بات ہے نا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے, آپ کو پتا ہے سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہونا شروع ہوئی. تو وہ یہی سال تھا جس میں یہ سب ہوا تھا. اور اس طرح ڈفرینٹ ڈیلیگیشن, وفد کیا ہوتا ہے, اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے, اس سال کو 9th ہجری کو, عام مینس ایئر اور وفود وفد کی جمع ہے ڈیلیگیشن. تو عام الوفود یعنی ڈیلیگیشن کا سال, وفدوں کا سال. اتنے وفد آئے تھے, یہ آگے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کتنے ہوں گے وہ, جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. عام اہل سیر کے مطابق, اہل سیر کون ہوتے ہیں؟ جو سیرت نگار ہیں, جو سیرت لکھتے ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے, مور دین 70. بعض اہل علم نے ان وفود کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی, خواہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو, تو ان کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچ گئی. یعنی اتنے کے قریب ڈیلیگیشن آئے تھے. ان وفود کی آمد فتح مکہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی, اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں ہی آئے تھے, بلکہ بعض ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے, لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پے در پے شکل میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا, اور یہ سلسلہ 10 ہجری بلکہ اس کے بعد بھی بعد تک بھی جاری رہا. اس لیے 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے. یعنی یہ وفود ایسا نہیں تھا کہ ابھی آ رہے تھے, کیونکہ آگے ہم ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں, بہت سارے وفود کا ذکر آئے گا. تو 100 یا 70 ہم اتنے تو ظاہر ہے نہیں پڑھ سکتے, لیکن چند ایک جن کی کوئی خاص خاص باتیں تھیں وہ آپ کی بک میں ہیں لکھے ہوئے. اب ان میں سنگل پرسنز بھی آئے تھے جو کہ ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ حضرت طفیل الدوسی, अबू जर गफारी, ये लोग आते रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते थे, देखने आते थे इस्लाम क्या है, और इस्लाम भी ले आते थे। और फिर हिजरत के बाद भी लोग आते रहे, वफूद भी आते रहे, लेकिन फतह मक्का के बाद जितने आए हैं ना 9th हिजरी में, इससे पहले इतनी इतने आए, यानी ऊपर तले आ रहे थे। और ये भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि तमाम का अजर एक हो जाए। अब हम कहेंगे सारे वो मुसलमान हो गए तो क्या फर्क पड़ा फिर। याद रखिए, फतेह मक्का से पहले जो इस्लाम में दाखिल हुए और जो बाद में दाखिल हुए, उनमें रिवॉर्ड में बहुत फर्क है। सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह हदीद आप आयत नंबर 10 में जाकर देख लीजिएगा, कि सबके अजर अलग अलग है, और अल उजूरु बेकदर अल जुहूद, ये कायदा है, अजर बकदरे जहूद, बकदरे कोशिश किए, जितनी जद्दोजहद, जितनी आपकी कोशिश होगी उतना ही अजर है ना। वो लोग जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए, जिन्होंने स्ट्रगल की, जो आपके साथ मिलके लड़े, उनमें और फतेह मक्का के बाद तो अब हर चीज इस्टेब्लिश हो चुकी है, उनमें फर्क है। याद रखिए, एक काम है सभी कर लेते हैं, सभी उसमें शामिल होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिस वक्त वो बूम कर रहा हो, जब वो इस्टेब्लिश हो गया हो, जब वो इन हो, इन जिसको हम वर्ड इन बोलते हैं ना, इन हो, बड़ा पॉपुलर हो, तब कर लेना, वो तो आसान है। लेकिन जिस वक्त उस काम के लिए वाकई एक जद्दोजहद की जरूरत हो, कुर्बानी देनी पड़ती हो, लोगों की बातें सुननी पड़ रही हो, उस वक्त जो लोग शामिल होते हैं या जो लोग उस काम में स्ट्रगल करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, उनका अजर बहुत ज्यादा है उनसे जो बाद में शामिल हो जाए। ठीक है, उन बाद वालों को भी अजर मिलेगा, लेकिन जो पहले वाले हैं ना, उनके अजर को वो नहीं पहुंच सकते जो बाद वाले। इसलिए कभी इस इंतजार में ना बैठे रहेंगे, हाँ जब सब करेंगे तो मैं कर लूंगी। सब करेंगे तो आपने कर लिया तो कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर दिया आपने। जिस वक्त कोई नहीं कर रहा और आपने हक को हक मान के उसके साथ चल पड़े ना, वो असल लोग हैं, जो जेन्युइन लोग होते हैं, जिनके रिवॉर्ड बहुत बड़े होते हैं, जो साबिकून और साबिकून अलवलून होते हैं। तो ये फिर वफूद आने शुरू हो गए, और ये वफूद की एक मजे की बात आपको बताऊं कि मस्जिद नबी में भी आज भी उस्तुवानल वफूद मौजूद है, यानी जो सतून है जिसके जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वफूद से मिला करते थे। अगर आपको अल्लाह ताला हम सबको मौका दे, आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा कि कहाँ पे ये है। तो ये वफूद ज्यादातर कबाइल के सरदार, रुआसा और अहले हिल व अक्त पर मुश्तमिल होते थे, यानी अथॉरिटेरियन लोग होते थे, जो बड़ी बड़ी स्टेट्समैन, बड़ी अथॉरिटीज वाले सरदार, रईस उनके लोग, और बसा औकात आदमी तन्हा या छोटी सी जमात के हमरा आता था। तो वो उरवा बिन मसूद की भी बात आई थी पहले, कैसे उनको शहीद कर दिया गया था। तो वो इस तरह से कुछ लोग अकेले अकेले भी आके करते थे कि इस्लाम के बारे में पता किया, फिर अपने घरों को जाते थे, फिर जाके बताते थे, लेकिन बाज दफा उनके लोग सुनते थे, बाज दफा नहीं सुनते थे। फिर इन वफूद के आने का मकसद हर वक्त के एतबार से अलग अलग होता था, यानी सारे वफूद कोई ये ना समझे कि आते ही वो कोई फौरन कलमा पढ़ना शुरू कर देते थे, ये नहीं, ऐसा नहीं होता था। ये सब तैयार हैं, वो आ रहे हैं, आते जा रहे हैं और कलमे पढ़ते जा रहे हैं, आते, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ लोग होते भी थे जो मुसलमान होते थे, लेकिन कोई कैदियों और गिरफ्तारों को छुड़ाने आता था, जैसा कि वफ्दे हवाजिन था, हमने हवाजिन का पढ़ा था ना पहले, और वफ्दे तमीम के जिक्र में गुजरा है। आपको पता है वफ्दे तमीम भी तो मुसलमान हो गया था। ये पहले आप पीछे देखें, मेरे पास जो बुक में है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से पेज पे हम पढ़ चुके हैं। ये पेज नंबर 321 गज़वा हुनैन में बनू तमीम की तादीब और इनका कबूल इस्लाम, अब लिखा हुआ ना इसमें 9 हिजरी। तो ये याद रखिएगा, जो अभी हम वफूद के बारे में पढ़ने लगे, ये सब एट ए टाइम नहीं आ गए, कुछ आगे आ रहे हैं, कोई पीछे आ रहे हैं। ऐसा भी हुआ कोई फतह मक्का से पहले आए हैं, लेकिन क्योंकि बुक में अब हर जगह वफूद का जिक्र करना की बजाय उन्होंने एक जगह तमाम वफूद का जिक्र कर दिया, ये दिस इज द प्लेस, क्योंकि आमुल वफूद में और भी वफूद का जिक्र हो रहा था, तो जो पहले भी आए थे उनका भी एक ही जगह सारी लिस्ट है, ठीक है। तो कहाँ पे थे कि हाँ, बनू तमीम के जिक्र में गुजरा है, और बनू तमीम में वो तमीम अद्दारी जो है उनका भी आपको मैंने जिक्र बताया था। और ये वफद वो था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, और इसमें काफी लोग शामिल थे, और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बड़ी दुआ करके भी कहा था कि तुम्हें इस्लाम मुबारक हो, और ऐसे। तो इन्होंने आगे से कहा कि आप हमें कोई तोहफे तहाए कोई चीजें दें हमें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी बात कोई ज्यादा पसंद नहीं आई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक और वफद आया हुआ था उनको फरमाया कि तुम्हें इस्लाम मुबारक हो और तुम्हें ईमान की खुशखबरी हो और ऐसे हो। तो खैर, बनू तमीम इस्लाम तो ले आए थे, लेकिन वो जो दूसरा वफद था उन्होंने फौरन आगे बढ़ के कबूल किया कि हाँ, हम कबूल करते हैं इस्लाम को। इन्होंने थोड़ा सा ये कहा, हम उस पर खुश होंगे कि आप हमें कुछ दें, आप हमें कुछ नवाजें, तो फिर हम खुश होंगे। तो खैर, जो दूसरा वफद था वो यमनी वफद था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी लोगों के लिए दुआएं भी बड़ी की हैं, और ये भी फरमाया कि ईमान यमन में है, हिकमत यमन में है, क्योंकि यमनी लोग जो थे ना, वो भेड़ बकरियां चराने वाले होते थे, इनमें आजी बड़ी थी। तो इसमें एक एक बहुत अहम बात और भी है, क्योंकि सूरह हुजरात आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे आता भी है कि कुछ लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से आवाजें देने शुरू हो गए, तो अल्लाह ताला ने फिर मना फरमाया था कि आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप बाहर से आवाजें देने लगो नबी को। तो यही बनू तमीम का ही एक एक उनका ग्रुप जो था वो लेट हो गया था, एक पहले पहुंच गया एक लेट हो गया था। तो वो जो लेट हुए थे वो रात को पहुंचे, जब वो रात को आए बड़े एक्साइटेड होके भाग गया है, जब उन्होंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही नहीं है, लोगों ने बताया वो तो अपने घर चले गए। तो वो इतने एक्साइटमेंट में थे कि वो घर के बाहर जाके, क्योंकि बदू से लोग थे, बाहर जाके पुकारने लगे, ओ मोहम्मद बाहर आओ हम आ गए हैं, हम यहाँ हैं, हम आ गए हैं, आप आए बाहर। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को मना फरमाया फिर कि आप ऐसे नहीं पुकार सकते नबी को। तो ये वो बनू तमीम थे। तो कोई फख्त अपने लिए या अपने और अपनी कौम दोनों के लिए अमान का तालिब बन गया है कि जी आप हमें अमान दे दें, यानी हम आपको जिजिया दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन आप हमें अमान में रखें। तो किसी को ऐसा नहीं था कि कोई गन पॉइंट पे मुसलमान किया जा रहा था, तलवारों से मुसलमान किया जा रहा था। अगर कोई जिजिया देने पे, आप आगे देखेंगे भी इसी में नजरान का जो वफ़ था उसने यही कहा था, कोई फख्र व मुबाहात या मुनाजरे और मुजादले के लिए आया था, यानी अपने खानदानों पे फख्र, और यानी एक जिसको कहते हैं डिबेट करने के लिए आया। कोई ये गुजारिश करने आया कि इस्लामी लश्कर वापस चला जाए ताकि इसकी कौम पर हमला ना हो। किसी ने आकर इताअत और जिजिये का इकरार किया, किसी ने आकर इस्लाम में अपनी रग़बत जाहिर की और अपनी कौम से भी इसी तवक्को का इजहार किया, यानी स्मॉल डेलीगेशन आ रहे थे, उन्होंने काफी इस्लाम की तरफ उनका मिलान था, वो इंक्लाइंड थे इस्लाम की तरफ, उन्होंने ये कहा हमारी कौम भी जो है ना वो भी, हमें यही उम्मीद है कि वो भी इस्लाम ले आएगी। कोई मुसलमान फरमा बरदार और अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर आया, और किसी ने इस्लामी तालीमात और अहकामात जानने की रग़बत जाहिर की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर अहकामात भी बताए, तालीमात भी इस्लाम की बताई। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस बशाशत और करीमाना अखलाक पर पैदा फरमाया था, इसके मुताबिक आप इन वफूद का इस्तकबाल फरमाते थे। आप देखें वफूद के अंदर जो लोग आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक फाते हैं, एक बड़ी स्टेट के यानी बड़े हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तकबाल फरमाया करते थे। से हमें ये भी दर्स मिलता है कि जब कोई मेहमान आपके पास आए तो उसका इस्तकबाल करने में कोई हर्ज नहीं है, कि आप आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल कीजिए। इन्हें खुशकिन तहाइफ से नवाजते, यानी कोई आपके पास आया है वो अब जा रहा है आपसे, तो उसको तोहफा देना भी एक सुन्नत है। इस्लाम की तरगीब देते थे और ईमान और शरीयत की बातें सिखाते थे कि वो अपने पीछे वालों को सिखाएं। दर हकीकत ये वफूद सहराओं में रहने वाले बदुओं के अंदर दीन को तेजी से फैलाने का अहम जरिया थे, क्योंकि देखें उस वक्त ना कोई टीवी था, ना कोई कोई और ऐसा मोड था जिसके जरिए अनाउंसमेंट्स की जाएं कि एक जगह अनाउंस कर दिया सब जगह पहुंच गया, ना कोई इस तरह की और मीडिया सोशल मीडिया या ऐसी चीजें थी। अब इस सूरत हाल के अंदर कैसे इस्लाम ने फैलना था कि अगर लोग आए और जो रूट है, जो जहाँ पे इस्लाम की बेस है, वहां से तालीम लेकर और आगे अपने अपने कबाइल में फैल जाए। ना तो ऐसे हो सकता था कि मदीना की पूरी आबादी जाके ही फैल जाती, वो भी नहीं मुमकिन था। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पहुंच सकते थे, यही हो सकता था क्योंकि लोग एक बेस पे आ जाए और वहां से लेके चीजें फिर अपने अपने कबाइल में जाके बताएं। तो इससे बहुत प्रमोशन मिली इस्लाम को, बहुत लोगों को पता चलने लगा। और आज भी यही तरीका कार इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा है कि जब हम ये सोचते हैं ना, और मोड्स तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं, कि जब हम सोचते हैं फलां जगह हम कैसे पहुंचे, फलां तक हम कैसे पहुंचाएं, उनके लोगों में से किसी एक को एजुकेट कर दें, वो खुद जाके अपने लोगों को फिर बताएं। जैसे ऐसे एरिया आज भी मौजूद हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे ये सारी सहूलियात नहीं है जिन जो आज हम यूज कर रहे हैं, तो अगर उनमें से कोई एक बंदा पूरे वो गांव या वो जो इलाके हैं पूरे उठ के तो नहीं आ सकते शहरों में आके ले सकते, उन लोगों में से कोई एक आके तालीम लेके जाके अपने इलाके में सिखाए, तो वो है जो यानी यहाँ से हमें पता चलता है तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। चुनाचे इनके नतायज अगराज व मकासिद के तनव्वो और असबाब वजूह के इख्तलाफ के बावजूद ये होते कि पहले वफद में आने वालों ने इस्लाम कबूल किया, फिर जल्द या थोड़े ही दिनों बाद कौम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, ये जब लोग आते थे वहां से बद्दू आ रहे हैं कोई कहीं, तो उनका नतीजा क्या निकला? ठीक है, उनके अगराज व मकासिद डिफरेंट हो सकते थे, जैसे बताया कि कुछ कोई अपने कैदियों को छुड़ाने आया, कोई अपने कोई मनाजरे करने आ गया, कोई अपने फखर जिताने आ गया अपने खानदानों के, कोई कुछ करने आ गया, लेकिन इन द एंड होता ये था कि लोग इस्लाम ले आते थे, अपने जाके इलाकों में बताते थे, वो भी इस्लाम ले आते थे। इससे सिर्फ बाज वफूद मुस्तस्ना थे, मुस्तस्ना है बाज सिर्फ ऐसे हैं जो जिनके एक्सेप्शनल केस थे, जिनमें एक है मसलन बनू हनीफा, बनू हनीफा और मुसैलमा कज्जाब का वफद। बनू हनीफा जो था वो मुसैलमा कज्जाब का ही ट्राइब था। अब ज़ेल में चंद अहम वफूद का जिक्र किया जाता है, जिसमें सबसे पहला इन्होंने जिक्र किया कबीला अब्दुल कैस का वफद, यानी वफद अब्दुल कैस। ये लोग मशरकी अरब के बाशिंदे थे, यानी ये लोग ईस्टर्न ईस्ट से आए थे, और कहाँ से ये अभी पता चलता है आगे। और मदीना से बाहर पहले पहल इन्हीं ने इस्लाम कबूल किया था, चुनाचे मस्जिद नबवी के बाद सबसे पहला जुमा इन्हीं की मस्जिद में अदा किया गया जो बहरीन के जुवासा नामी गांव में थी। अब इससे पता चला कि ये बहरीन के रहने वाले थे, जो आज बहरीन है ना वही बहरीन उस वक्त भी था क्या, तो ये वहां के रहने वाले थे, आउटसाइड था यहाँ के, यहाँ से यहाँ पे ईसाई लोग भी थे, यहाँ पे ये बुत परस्त लोग भी थे, और इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इनका वाक्या जो आता है हमें पता चलता है रहीकुल मख्तूम में भी वो वाक्या है, अगर आप वहां से देखना चाहें, कि एक आदमी उनमें से आया था पहली बार, जो इस कबीले से एक आदमी आया था तिजारत की गर्ज से मदीना, वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद पहली दफा मदीना आया तो तब उसको इस्लाम का पता चला था, वो तभी मुसलमान हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत लेके अपनी कौम के पास गया था। तो उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, और उनके 13-14 आदमियों का एक वफद हुरमत वाले महीने में खिदमत नबी में हाजिर हुआ था। ये पहले की बात है, यानी ये उस वक्त की बात है, ये आगे आ रहा है। बनू अब्द कैस का वक्त दो मरतबा आया, आप समझ लें, वो पहले वो एक आदमी मुसलमान हुआ, अब देखें वो अपने वहां पे गया, वहां पे लोग मुसलमान हुए, फिर वो 13-14 का वफद जो था वो कब आया था, एक मरतबा 5 हिजरी में और एक मरतबा वफूद के साल में, ठीक है, यानी एक दफा 5 में और एक दफा 9 हिजरी में, तो बहुत पहले फतह मक्का से बहुत पहले ही ये लोग काफी इनके मुसलमान हो गए थे। पहली बार आने वालों की तादाद 13 या 14 थी। ये लोग जब मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मस्जिद के दरवाजे ही से अपने आप को सवारियों से दे फेंका। इनका ये हाल था। ये लोग जब आए तो देखें, एक बदू वो भी होता है और दूसरे ये होता है कि एक मोहब्बत भी थी, क्योंकि मुसलमान पहले ही हो चुके थे ना ये। तो जब ये आए हैं तो इन्होंने सवारियों से छलांगे लगा दी। एक तो लाके सवारियों को वहां पे मस्जिद के बाहर ही खड़ा किया और वहीं से छलांगे लगा दी और सवारियां और सामान उसी तरह छोड़ दिया। कोई तेज तेज भागना शुरू हो गया, कोई तेज कदमों से चलना शुरू हो गया, कोई मामूल की चाल चल रहा था, यानी भागम भाग अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर हो गए। और आके उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हाथ को पकड़ लिया, बूसा दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये आगे बात आ रही है और फिर इससे शायद आपको भी एक बात याद है। तो मस्जिद के दरवाजे ही पर अपने आप को सवारियों से देख फेंका और लपक कर खिदमत नबी में हाजिर हुआ और सलाम किया। कुछ याद आ रहा है आपको? अब बताइए, पढ़ते ही मुझे क्या याद आया। मस्जिद नबी में जब वो दरवाजे खोलते हैं रियाजुल जन्ना जाने के लिए, तो आपने देखा है लोगों का हाल क्या होता है? ऐसे भागते हैं, ऐसे भगदड़ होती है, और औरतों की इतनी शर्म भी आ रही होती है कि जिस तरह से औरतें दीवाना वार भाग रही। अपनी जगह मोहब्बत, वो सब अकीदत, आपका जोश, आपका ये अपनी जगह, लेकिन ये कोई पसंदीदा चीज नहीं है। इसका आपको अंदाजा आगे हो सकता है। इनके साथ एक आदमी भी था जो कहा जाता है कि इनका सरदार था, मुस्लिम में भी ये रिवायत आती है। उनका नाम था अशज। आगे देखते हैं बुक में। इनके साथ एक शख्स अब्दुल्ला बिन औफ अल अशज था, जो उम्र में सबसे छोटा था। उसने सवारियों के पास रुककर उन्हें बिठाया, सामान इकट्ठा किया। सामान को सब वो तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो दीवाना वार भाग गए थे। फिर कहा जाता है कि उसने जाके गुसल किया, उसने कपड़े साफ सुथरे पहने, यहाँ पे तो दो सफेद कपड़े निकाल कर पहने। फिर इत्मीनान से चलकर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में दो आदतें हैं, दो खसलतें, मीन्स दो आदतें हैं जिन्हें अल्लाह और उसका रसूल पसंद करते हैं। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि कौन सी वो आदतें हैं दो जो अल्लाह और उसका रसूल पसंद करते हैं। फरमाया, अल हिल्म वल अनाबा। हिल्म और अनाबत, यानी बुर्दबारी और जब्त तहम्मुल। देखिए ना आप, उन्होंने कितना जब्त तहम्मुल किया, कितनी बुर्दबारी थी उनके अंदर, समझदारी देखिए ना कितनी थी। कि ऐसे नहीं है कि वो भी कूद पड़ते और धक्के देते हुए सबको, रोनते हुए, किसी को कुछ पता नहीं। नहीं जी, हमें मोहब्बत बहुत है ना। आप देखें तवाफ के अंदर, आप देखें सही के अंदर, कोई किसी का लिहाज ही नहीं है। बाद लोग तो कोनियां भी निकाल लेते हैं ताकि लोग खुद ही बचते बचाते अपनी आपको महफूज करें, हमें किसी की परवाह नहीं। कोई व्हील चेयरें पैरों में मारते हैं, कोई कुछ करते हैं। उन्होंने कोई नहीं धक्के दे के सबको पीछे किया और भागना शुरू हो गए और वो दीवाने हो गए और उनको पता ही नहीं कि हमारे ऊंट कहाँ है, हमारे सामान क्या है। अच्छा, सारे ही आए थे ना सफर से, उन्होंने पहले इत्तमाम किया कि मैं किन की खिदमत में जा रहा हूँ। ये भी दूसरे को इज्जत देना होता है। जब आपने साफ सुथरे कपड़े पहने, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े तमीज के साथ वो आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनकी तारीफ फरमाई, दूरअंदेशी और बुर्दबारी। सुभान अल्लाह। तो ये तो पूरी उम्मत से ही उठ गई आज। तो इसका नजारा आपने देखना हो तो आप जिन जगहों का मैं जिक्र कर रही हूँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह कि कितने लोग होते हैं उस वक्त। वो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है वहाँ पे, हमें वहाँ पे अदब के साथ, इत्तराम के साथ, खामोशी के साथ जाना चाहिए। और वो दौड़ भाग ऐसी होती कि उससे पूरी जैसे मस्जिद गूंजने लगती है, ऐसा लगता है घोड़े दौड़ रहे हैं। बिलीव मी, जो गए हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह अंदाजा होगा। क्या फिर हमें वैसे ही जाना चाहिए जिस काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में पसंद नहीं फरमाया? यानी जब उनको कह रहे हैं ना, तो असल में ये सबको सुनाना हो गया कि बाकी भी सुन ले कि इनका काम वो है जो तारीफ के काबिल है। इन्होंने जो काम किया वो सही किया। बेशक बाकी लोग आए, बड़ी उनकी मोहब्बत थी, लेकिन उनके काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया। वो जैसे सफर से आए थे, जैसे भी गर्द पड़ी थी, जैसे भी भाग्य आ गए, बस वो हम सोचते हैं इसके अंदर अच्छाई है, उसमें नहीं है। अगर आप उम्रा के लिए भी जा रहे हैं, जाएं अपने होटल में सामान रखिए, सही से अपने आप को फ्रेश अप करें, वुजू करें, कपड़े चेंज करें, फिर जाएं एक अदब और एहतराम के साथ। इन्हें किसके घर जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम क्यों भूल गए? तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, जो उनको पसंद है। इसी तरह हम और जगहों पे भी देखें कि हमारी वजह से लोगों को अजियत ना पहुंचे कि धक्के देखते हुए हम पहुंच रहे हैं, या हमें लाइन बनाना ही भूल गया। लाइन में भी सब्र और तहम्मुल चाहिए ना, तहम्मुल चाहिए ना, समझदारी चाहिए। तो फिर हम कहीं लाइन नहीं बनाते, बस एक हजूम की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। दर्स भी खत्म होता है तो जो लोग मिलने आते हैं वो ये नहीं करते कि वो लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, हम एक एक करके मिल लेते हैं। हम इससे सीखें, इसीलिए तो हम सीरत पढ़ रहे हैं। ये मैनर्स भी हमें सीरत सिखाती है। तो लाइन बनाइए, एक एक करके मिलिए, ना कि हजूम की सूरत में सारा वॉल के वॉल टेबल के ऊपर उमड़ आए, ये अच्छी बात नहीं होती। ये इसमें कोई मोहब्बत की बात नहीं। फिर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मदीना पहुंचने से पहले भी फरमाया था, क्या फरमाया था, कि तुम पर एक काफिला नमूदार होगा जो अहले मशरिक में सबसे बेहतर है, जिसे इस्लाम पर मजबूर नहीं किया गया। उन्होंने अपनी सवारियां थकाई, यानी इतना सफर करके आए, लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे थे, और अपना तोशा खत्म किया। ए अल्लाह, अब्दुल कईस को बख्श दे, यानी इस वफद के लिए जो आने वाले थे उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पेशीन गोई फरमा दी थी, अल्लाह की तरफ से उनको खबर मिली होगी। तो जिस वक्त ये वफद आया तो हज़रत उमर उस वक्त बाजार में थे, उनको पता चला कि ये वो लोग आए हैं जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी। फौरन इतला दी उन्होंने और इनको वेलकम किया। तो उनकी मोहब्बत थी वो बहुत, उनकी तारीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लेकिन उनकी मोहब्बत अपनी जगह। देखें फिर एक बंदा कैसे स्टैंड आउट करता है ना, वो सबसे ज्यादा नंबर ले जाता है। फिर जब वफत आ गया तो आपने फरमाया खुश आमदेद हो, यानी मरहबन बिकुम, किसी को खुश आमदेद करना, मरहबा कहना, ये भी दूसरे को अच्छा फील कराता है, वांटेड फील कराता है, ना कि हम मुंह बना लें या इस तरह कर लें, या हम समझे कि कोई बात नहीं है, ठीक है आ गए हैं तो बस आ गए। नहीं, अगर आप किसी को ऐसा वेलकम देंगे, वार्म वेलकम जिसको कहते हैं, तो ये भी आप सुन्नत पूरी कर रहे हैं। तो मरहबा कहा आपने उनको, ना रुसवा हुए ना नादम, यानी आपको यहाँ पे कोई रुसवाई नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, इज्जत दिए जाओगे, ठीक है। उन्होंने आपसे ऐसी फैसला कुन बात पूछी जिस पर खुद भी अमल करें और उन लोगों को भी बाखबर करें जिन्हें पीछे छोड़ आए थे। अब उन्होंने सिर्फ ये इतना नहीं किया कि हम आ गए हैं तो अब हम ही सीख के चले जाएं, उन्होंने कहा हमें वो बातें बता दें कि जो हम पीछे वालों को भी जाके बताएं, अपने जो अपने कबीले वाले हैं, क्योंकि हम रोज रोज नहीं आ सकते। उन्होंने बताया कि हमारे और आपके दरमियान ऐसे कुछ कबाइल हैं कि वो जो मतलब जैसे जो डाके वगैरह ये चीजें करते हैं, तो हम सेफ नहीं है यानी आने में। तो अब हम हर उसमें नहीं आपके पास मतलब जल्दी जल्दी आ सकते, हम सिर्फ हुरमत वाले महीनों में आ सकते हैं। तो हमें कोई ऐसी बात बता दें जो हम अपने पीछे वाले लोगों को भी जाके बताएं, जो हमें जन्नत में भी लेकर जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चार बातों का हुक्म किया, जो ये हैं। वो चार बातें क्या हैं? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी गवाही देना यानी तौहीद की। नंबर टू, ज़कात कायम करना। नंबर थ्री, सॉरी नंबर टू नमाज कायम करना, नंबर थ्री ज़कात देना, नंबर फोर रमजान के रोजे रखना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया। अभी चूंकि हज फर्ज नहीं हुआ था इसलिए उसका हुक्म नहीं दिया। इसे ये क्यों नहीं फर्ज हुआ था, ये कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, आप लोग मेरे साथ हैं ना, कौन सा ईयर चल रहा है, किस वक्त की बात हो रही है, बताएंगे? हाँ जी, लिखे यहाँ पे, मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, किस साल की बात हो रही है, किसी को नहीं पता, भी मैंने बताया कौन सा साल था वो। जी कौन सा साल था, इसके वफूद अब्दुल कईस के किन दो सालों में आए थे, पांच में और नौ हिजरी में आए थे, ये किस वक्त की बात हो रही है? शाबाश, पांच हिजरी की बात हो रही है, ये पहले वफद की बात हो रही है, दूसरे की नहीं बात हो रही, ठीक है। दूसरा वाला तो बाद में आया ना, ये जब पहला वाला आया था उसकी बात हो रही। देखिए अभी यहाँ पे आपको मैंने बताया, देखिए आप पीछे देखें कि एक मरतबा 5 हिजरी में और एक मरतबा वफूद के साल में, पहली मरतबा आने वालों की तादाद 13 या 14 थी। ये लोग जब मदीना पहुंचे, इसे पता चल रहा है पहला वाला वफद की बात हो रही। उस वक्त अभी हज जो था वो फर्ज नहीं हुआ था। हज कब फर्ज हुआ है? हज कब फर्ज हुआ है? हज इसमें इख्तलाफ है। बाज कहते हैं कि हो सकता है 5 हिजरी या 6 हिजरी में, बाज कहते हैं नहीं 9 या 10 हिजरी में फर्ज हुआ है। ठीक है, ज्यादातर कहते हैं 9 हिजरी में, सही है ना। और हज तो चल रहा था, लेकिन फर्जियत जो इस्लाम में हज की फर्जियत है ना, वो ज्यादातर मुफसरीन ने लिखा कि 9 हिजरी। अलबत्ता इनसे ये भी तलब किया कि माले गनीमत से पांचवा हिस्सा अदा करें और उन्हें नशा आवर मशरूबात से मना किया। ये लोग जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि हमारे वहां पे बहुत सख्त यानी सर्दी वगैरह भी होती है, हम सर्द इलाके में रहते हैं, तो क्या हम खमर पी सकते हैं, नशे वाली चीज। देखिए आज भी कई इलाके ऐसे हैं ना, वहाँ पे वो शराब या इन चीजों से ही अपने आप को वॉर्म रखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम नशावर मशरूबात ले सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उससे मना किया था, जिन्हें वो बकसरत पीते थे, उनकी तो आदतें थी ना इससे, लेकिन वो देखिए उससे फौरन हट गए। और इन बर्तनों से भी मना फरमाया। वो ऐसे बर्तन बनाते थे जैसे कद्दू है, इसको अंदर से खाली करके उसको तारकोल से उसकी लाइनिंग जो है ना वो बना लेते थे और उसमें नबीज बनाते थे, शराब की किस्म समझने, उसमें नशा आ जाता है ना। तो जिन में ये शराब बनाया करते थे, गो के बाद में ये बर्तन इस्तेमाल करने जायज हो गए थे, लेकिन उस वक्त इसलिए मना किया गया था क्योंकि एक चीज होती ना उसको वो किसी चीज की याद दिलाती है, उसकी यादगार होती है कि इस बर्तन में हम यही खाते हैं। मसलन है आपको कप और सॉसर दे दी जाए तो आपको चाय ही याद आएगी, तो उन बर्तनों को भी यानी ना इस्तेमाल करो, ताकि वो क्योंकि एक आदत खत्म जब करनी होती है ना, तो उन चीजों को भी जो उसकी निशानियां होती हैं वो भी खत्म कर दें तो अच्छा है, ताकि वो बिल्कुल यानी छोड़ सके आप उसको, वरना तो बार बार याद आएगा, हाय हम इसके अंदर ये खाते थे, इसमें ये पीते थे, तो फिर वो बार बार उसी चीज की तरफ लौट जाएंगे। ये और अगली एक पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा बहुत कम सबक होता है। फिर साद बिन बकर के रईस जमाम बिन सालबा की आमद, ये देखें अब वन मैन डेलीगेशन है, ठीक है, अब एक बंदा आ रहा है। ये बादिया यानी जंगल के रहने वाले अक्खड़ मिजाज है, यानी जैसे बद्दू होते हैं देहाती आप लोगों को आप ज्यादातर देखेंगे, थोड़ा सा उनके मिजाज के अंदर एक अक्खड़पन होता है। दो चोटियां रखे हुए थे, अब उनकी दो चोटियां भी थी साइड से। मदीना पहुंचे तो मस्जिद नबी में अपनी ऊंटनी बिठाकर बांधी, फिर कहा तुम में इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कौन है। अब ये देखें कि उनका हुलिया भी यहाँ पे बयान किया गया और ये भी कि उनका मिजाज कैसा था, ताकि इससे थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे तो हर किस्म के लोग होते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के लोगों के साथ कैसे डील करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी क्वालिटी है। अब आज के वक्त में ऐसा कोई आदमी आ जाए जिसकी दो पहले तो चोटियां उसने वो ब्रेड्स बनाई हुई है, दोनों तरफ लटकाई हुई है, और जरा ऐसा मिजाज का भी जरा खड़ा है, और मस्जिद के सामने ही अपनी लाके ऊँटनी बांध दी है, वो कोई जगह तो नहीं बांधने की ना, वहां पे लाके ऊँटनी बांध दी, तो सबसे पहले तो उसको कहा जाएगा तुम अपना पहले हुलिया तो ठीक करके आ, फिर तुम्हें मैं कोई इस्लाम की बात बताऊंगा। हम तो इतने वो हो जाते हैं ना एकदम इस मामले में, हाल हुलिया के मामले में इतनी जज्बाती हैं कि वो हम हाल हुलिया देख के जजमेंटल हो जाते हैं कि इसको क्या बताना, इसने कहाँ मानना है, ये कहाँ कुछ समझेगा। लेकिन आप देखें जरा इनकी स्टोरी कि उन फिर कहा तुमने तुम में इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कौन है, इसका मतलब है कि अब्दुल मुत्तलिब को सारे जानते थे, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला की कितनी बड़ी एक हिकमत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे घराने में पैदा फरमाया। अब्दुल मुत्तलिब की शोहरत इर्द गिर्द के अरब कबाइल में थी। लोगों ने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और कहा ए मोहम्मद, यानी सीधा स्ट्रेट नाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे पूछूंगा और पूछने में आप पर सख्ती करूंगा, यानी मेरा यही स्टाइल है भाई, हम गांव वगैरह के लोग होते हैं, हम वहां के हैं, हम देहाती हैं, हम बद्दू हैं, मेरा यही स्टाइल है, आते ही कह दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आप पर सख्ती करूंगा, मुझ पर अपने जी में गुस्सा ना हो, यानी आप गुस्सा ना करना, मैं ऐसा ही हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आज हमारे जैसे मिजाज के होते तो कहते कि नहीं, पहले जाके तुम अपना उसा दुरुस्त करके आओ, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, पहले तुम मैनर सीख गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहो पूछो। एक और जगह पे आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बिल्कुल महसूस नहीं करूंगा, जो दिल में आता है पूछो। तो उन्होंने कहा हमारे पास आपका एक कासिद आया, यानी आपका एक रिप्रेजेंटेटिव, मैंने बताया ना वो बल्लेगीन को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे, एक मैसेंजर आपका आया, उसने बताया कि आप कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया उसने सच कहा है। उन्होंने कहा अच्छा तो आसमान किसने पैदा किए? आपने फरमाया अल्लाह ने। उन्होंने कहा अच्छा तो जमीन किसने पैदा की? आपने फरमाया अल्लाह ने। उन्होंने कहा अच्छा ये पहाड़ किसने नसब किए और इसमें जो कुछ बनाया किसने बनाया? आपने फरमाया अल्लाह ने। अब ये देखें कि इंसान सोचता है ये बात कौन सी इतनी बड़ी थी पूछने की, ये तो बात वहां पे बच्चा बच्चा जानता था, मुशरिकीन सारे ही ये कहते थे, तो ये कोई नई बात तो नहीं थी जो वो कह रहा। लेकिन उनके कहने, उनके पूछने के अंदर एक चीज छुपी हुई थी कि जस्ट एक बात का रिवाइवल कि अल्लाह ने बनाया ना, ठीक है आप ये कहते हैं आसमान किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया ना, हाँ पहाड़ किसने बनाए, अल्लाह ने बनाया ना, तो ठीक है मैं फिर उसी जात की कसम देकर आपसे पूछता हूँ जिसने आसमान बनाए, जमीन पैदा की, पहाड़ों को नसब किया, क्या आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं? क्या अल्लाह ने आपको अपना रसूल बना के भेजा? आप समझ आई विजडम इस सारी चीज? देखिए समझदार कितने थे वो लोग, पहले ये सारी बातें पूछी, अच्छा फिर मैं उसी अल्लाह की कसम जिसने इतना बड़ा आसमान बनाया, ये जमीन बनाई, पहाड़ जैसी चीजें बना दी, उसने आपको अपना रसूल बनाया, क्या वाकई ये बात सच है? आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा आपके कासिद का ये भी कहना है कि हम पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। आपने फरमाया उसने सच कहा। उन्होंने कहा उस जात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा इस आपके कासिद का ये भी कहना है कि हम पर हमारे अम्बाल में जकात है, यानी हमारे मालों में से हमें जकात पे करनी है। आपने फरमाया उसने सच कहा। उन्होंने कहा तो इस जात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? आपने फरमाया हाँ। आप देख लें कसम दे दे के पूछ रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि उस अल्लाह की कसम कोई झूठी नहीं खाएगा। सुभान अल्लाह, उस रब की जो आसमान जमीन पहाड़ सब पैदा करने वाला है, कैसे हो सकता है कोई उसकी झूठी कसम खा ले? इतना उनको भी यकीन था। और आप ये भी नोट कर रहे हैं कि इसका मतलब कासिद ने कैसे टू द पॉइंट बातें बताई हैं, एज इट इज बात पहुंचाई है, कहीं ये नहीं वो करे आपके कासिद ने तो ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे नहीं मैं ये तो हमने नहीं कहा होगा, नहीं हाँ हम ये मेरे कासिद ने सही कहा। उन्होंने कहा आपके कासिद का ये भी कहना है कि हम पर साल में रमजान के महीने के रोजे हैं। आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा तो उस जात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा आपके कासिद का ये भी कहना है कि हम में जो बैतुल्लाह तक रास्ते की ताकत रखता हो उस पर हज फर्ज है। आपने फरमाया उसने सच कहा, यानी मेरे कासिद ने सच बातें बताई हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस बात को हमें समझना एक चीज का है कि हम भी जब बात को आगे पहुंचाने लगे ना तो एज इट इज पहुंचाया कीजिए, ऐसे नहीं कि बात कुछ कही गई हो और हम कुछ और पहुंचा रहे हैं, हमने आधी सुनी आधी नहीं सुनी, बर्तन धोते हुए सुनी, गाड़ी चलाते हुए सुनी, अब जो आधी उल्टी सीधी जैसी भी सुनी उसको अपने वर्ड्स में जाके किसी और को कुछ और ही बना के बता दे, जी वो तो बता रही थी क्लास में, ये दुरुस्त नहीं होता। और दीन के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए इन चीजों में, इस तरह हम केयरलेसली नहीं बयान कर सकते। बाज दफा लोग मुझे कहते हैं आपने ना आपने लेक्चर में ये बताया था, मैं अपना सर पकड़ लेती हूँ कि ये मैंने कब बताया था, मैंने तो कुछ और बताया था वो कुछ और कह रहे होते, पता नहीं उन्होंने कैसे सुना होता है क्या समझा होता है। अगर वो मुझे आके ये बता रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये आगे जाके क्या बताते हैं। इसलिए जब आप कासिद बने ना, अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाने वाले बने, तो जितना आपको जैसा बताया गया उसको एज इट इज लेकर जाए, ये देख ले यहाँ पे ये पता चलता है कि कासिद का क्या काम है, जो आगे पहुंचाने वाला था उसको कैसा पहुंचाना चाहिए। किसी एक बात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि नहीं ओहो उसको तो कुछ और कैसे भेजा था, शायद उसको तो समझ ही ना आई, ये क्या कह रहे हो, ये तो मैंने बात कही नहीं थी उसको कहने। फिर उन्होंने कहा तो उस जात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया, कि अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? आपने फरमाया हाँ। फिर उसने पीठ फेरी और कहा उस अल्लाह उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैं इस पर ना ज्यादती करूंगा और ना इसमें कमी करूंगा। क्या मतलब है? ना ना इसमें कुछ ऐड करूंगा, क्योंकि जब एडिशन होती है दीन की बातों में तो क्या होता है, तभी बिदात पैदा होती है ना। दीन कुछ है जी, हमें शौक आ गया कि अब हमने ये चीज मनानी है, तो अब हमने खुद ही ऐड कर लिया उसके अंदर, मेरा आज की रात भी इबादत की रात है, ये खुद ही ऐड करके बैठ गए, ये जो मुहर्रम है ये ऐसा है कि इसके अंदर तो काले कपड़े ही पहनने हैं, खुद ही ऐड करके बैठ गए, सफर है तो ये नहुसत का महीना है, ये कहाँ से ले आए। तो आप, हम ऐड नहीं कर सकते दीन में कुछ भी, ना हम कमी कर सकते हैं, जब कमी करेंगे तो भी पीछे रह जाएंगे, तब भी क्या होगा, कमी करेंगे तो बहुत सारी अजर वाली चीजों से महरूम रह जाएंगे ना। तो उन्होंने क्या फरमाया कि मैं ना ज्यादती करूंगा ना मैं कमी करूंगा, बस मैं इतना ही करूंगा। ये वाली वो मशहूर हदीस है जो हर लोग कोट करते हैं ना, कि जी कोई आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा था बस मैं तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बस ये करूंगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बशारा दे दी थी, तो हम भी इतना ही क्या करेंगे। फिर तो देख भी लेना कि वो आदमी एक बद्दू आदमी था, उनको इतनी समझ है, उन्होंने कहा बस हम इतना ही करेंगे। आप तो अपने आप को बहुत बड़े पढ़े लिखे और बहुत समझदार और बहुत एडवांस कहते हैं, आपको तो बहुत आगे जाना चाहिए। जब दीन का मामला आता है तो फिर हम ये हदीस लेके तो जल्दी कोट करते हैं। अब आपको समझ आई कि ये हदीस की कहाँ पे जगह थी, कौन आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, किसने क्वेश्चन पूछे थे, वो कहाँ से आया था बंदा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बशारत दी, फरमाया अगर इसने सच कहा है तो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा, क्योंकि ये चीजें आपसे और भलाइयों के दरवाजे खुलवाएंगी। नमाज मुनकरात से, फहाशी से, बेहयाई के कामों से रोकती है, ज़कात से लोगों का एहसास होता है, उनकी हमदर्दी आती है, उनके इंसान काम आता है। तो ये सिर्फ पिलर्स ये ऐसे ही नहीं है, इनसे आगे नेकियां फूटती हैं। दूसरी हमें क्या ये बात पता चली कि फराइज कितने जरूरी हैं, दे आर मस्ट, इनकी कितनी अहमियत है। ठीक है, सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, वो जरूरी हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि नमाज फराइज से हो जाती है, हमें सुन्नतें पढ़ने की क्या जरूरत है, तो देखें वो उनकी अपनी अहमियत है, क्योंकि फराइज जो हैं इनमें जो कमी रह जाती है, इनमें जो कोताही हो जाती है, इनमें जो भूल चूक हो जाती है, तो कयामत के दिन फिर इनकी जगह पर इंसान के जो सुन्नतें हैं, नफल हैं, वो तोले जाएंगे। क्या, तो इसलिए ये ऐसे ही नहीं है कि हमको सोचें कि सुन्नत नफल की क्या जरूरत है जब फर्ज है, तो फराइज अपनी जगह है, मगर इनसे फायदा होगा। और फिर दूसरे जो आगे आप नवाफिल अदा करते हैं, इनसे अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुर्ब फराइज से मिलता है, उसके बाद कोई और करीब अल्लाह के होना चाहे तो नवाफिल करे अदा। तो इन्होंने ये कहा कि मैं बस फर्ज इतने एज इट इज इतना ही करूंगा, तो इसका मतलब दीन एज इट इज ले, ना इजाफा ना कमी। उन्होंने उस पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की बशारत दी। फिर जब वो मुसलमान होकर और बुतों से किनारा कश होकर अपनी कौम में गए और अपनी कौम को बताया कि मैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात का हुक्म दिया और किस चीज से रोका है, इसके बारे में पूरी यानी एक हदीस आती है जो आपके सामने मैं रखती हूँ, क्योंकि इस हदीस के अंदर ये इस बात पे पूरी जो डिटेल है इसकी कि किस तरह वो आए थे। कौन सी किताब से है? बुखारी से है, किताबुल इल्म से। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इसके बाद ये शख्स पलट कर अपने ऊंट की तरफ चलने लगा, जब वो मुड़कर जा रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये दो लटों वाला सच बोलता है तो जन्नत में दाखिल होगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास बतलाते हैं कि फिर वो अपने ऊंट के पास आया, उसके घुटने की रस्सी को खोला, यहाँ से निकला और अपनी कौम के पास पहुंचा। कौम के सारे लोग उसके गिर्द जमा हो गए। पहला जुमला जो उसने अपनी जुबान से निकाला, कौम ने तो उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था ना कि जाएं पूछ के आए, तो वो ये था लात और उज्जा ने भी क्या खबासतों में डाल रखा था। लोग कहने लगे जमाम जुबान संभाल के बात कर, बर्स और कोड़ की बीमारियों से बच, बुजुर्गों की गुस्ताखी से पागल हो जाएगा, बच जा। जमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी कौम से कहने लगे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, ये दोनों अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ये दोनों मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही कुछ संवार सकते हैं। सुनो اقتدار اور جلال والے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اس پر کتاب اتاری ہے، جن جہالتوں میں تم پڑے ہوئے ہو وہ اس کتاب کے ذریعے تم کو ان سے بچاتا ہے۔ پھر کہنے لگا، سنو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اس رسول سے مل کے آ رہا ہوں، اس نے جو کرنے کا حکم دیا اور جس سے منع کیا وہ احکام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بتلاتے ہیں، اللہ کی قسم اس روز شام نہیں ہوئی تھی کہ ساری قوم مسلمان ہو گئی، کوئی ایک مرد اور عورت ایسی نہیں تھی جس نے اسلام قبول نہ کیا۔ جس قدر بھی قوموں اور قبیلوں کے وفد آئے، ان میں زمام بن ثعلبہ سے افضل کوئی نہیں تھا۔ وہ اتنے زیادہ اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوئے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تو ان کی قوم میں کوئی مرد اور عورت بھی کوئی بھی ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی، پھر انہوں نے مسجدیں بنائی اور نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا زمام بن ثعلبہ سے بہتر نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے اپنے خاندان، قبیلے، برادری کے لیے بیسٹ کون ہوتا ہے؟ جو ان کو ویزوں پر دبئی بلا لے، جو ان کو پیسے بھیجے، جو ان کو آگے کوئی ان کی فائنینشیل ہیلپ کرے، وہ اپنی جگہ ان چیزیں، لیکن سب سے بہتر وہ ہوتا ہے اپنے خاندان کے لیے جو اپنی خاندان کی آخرت کو سنوارتے۔ ہمیں بھی اپنے خاندانوں کے لیے ایسا ہی بننا ہے کہ ہم ان کی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں۔ دیکھیں حضرت، یہ جو بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی افضل نہیں تھا جتنے بھی آنے والے آئے، کیونکہ وہ اپنے پورے قبیلے کو دیکھیں ان کے ذریعے پیغام پہنچ گیا۔ عذرا اور بلی کا وفد، سفر 9 ہجری میں بنو عذرا کے 12 آدمی آئے اور قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا۔ یعنی یہ قصی کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے دادا کے آگے، دادا قصی جو تھے، کہ ان کی یعنی رشتہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل آئی نا، اتنی پیچھے کی پشتوں میں جا کے قرابت کا انہوں نے ذکر کیا، اور بنو بکر اور بنو خزا کو مکہ سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی اسے بتایا۔ بنو بکر اور بنو خزا بہت زیادہ مکہ والوں پہ ظلم کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ قصی کے ساتھ مل کے ہمارے انسیسٹرز نے ہیلپ کیا تھا ان کو کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا، لیکن اگین ویلکم کیا، اور ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی، اور کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھنے اور استانوں کے ذبیحوں سے منع کیا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ آپ یہ دیکھیں، وہ باتیں جو ان کو اسلام لانے کے اوپر بتائی جاتی تھیں، ہمیں اتنے اتنے سال اسلام میں ہمیں گزر گئے ہیں، ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ قسمت کا حال پوچھنے کے لیے ہمیں کسی کے پاس نہیں جانا، ہمیں ہمیں اپنے ہاتھ دکھانے نہیں ہیں کسی کو، ہمیں سٹارز نہیں اپنے دیکھنے کہ میرا ستارہ کیا کہتا ہے، ہمیں ٹیرو کارڈز کے ذریعے نہیں معلوم کرنا کہ میرا آگے کا سال کیسا گزرنے والا ہے، اور میں یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یا میں اس فلاں سے شادی کروں یا نہیں کروں، اس کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اور استانوں کے ذبیحوں سے منع کیا، وہ لوگ زیارت گاہوں پہ جا کے جانور ذبح کرتے تھے کسی کسی کے نام پہ، تو یہ اس چیز سے بھی منع کیا۔ دیکھیں وہ یہ باتیں اس وقت ہی سیکھ گئے، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں بلی کا وفد آیا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ یہ جب ٹھہرتے تھے تو اس دوران کیا کرتے تھے؟ یہ مسجد نبی میں ٹھہرا کرتے تھے، مہمان ہوتے تھے، اور صفہ میں آپ کو پتا ہے نا تعلیم کا انتظام ہوتا تھا، صحابہ کرام وہاں پہ سیکھتے تھے دین کو، تو یہ ان کے ساتھ وہاں رہتے تھے اور صحابہ سے بھی سیکھتے تھے، مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے تھے دیکھتے تھے، اذان دیکھتے تھے، دین کے مسائل دیکھتے اور سیکھتے تھے، اور چند دن بعد واپس چلے جاتے تھے۔ تو انہی میں ان کا ایک رئیس تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہمان نوازی کے بارے میں پوچھا تھا کہ مہمان نوازی میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا مدت ضیافت کتنی ہے، یعنی کتنے دن کی مہمان نوازی؟ آپ نے فرمایا 3 دن، یعنی 3 دن آپ کسی کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد جو بھی ہے وہ احسان ہے کسی کے ساتھ، تو 3 دن کی مہمان نوازی ہے، ان کے بھی ذکر ہو گیا۔ अब अगले भी उनका पढ़ लेते हैं। बनू असद बिन खुजैमा का वफद। 9 हिजरी के शुरू में इनके 10 आदमी आए। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। उन लोगों ने सलाम किया, फिर इनके तर्जुमान ने कहा, यानी ये बड़ा शोर गुल करते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और आके ये क्या कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हमने शहादत दी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और आप उसके बंदे और रसूल हैं, और ए अल्लाह के रसूल, आपने हमारे पास किसी को नहीं भेजा, फिर भी हम इस्लाम ले आए, और बनू फलां की तरह हमने आपसे लड़ाई नहीं की, लेकिन यानी हमने आपके साथ देख लें कभी जंग नहीं की है, ये भी देख लें, आप आपने हमारे पास किसी को भेजा नहीं था, फिर भी हम इस्लाम ले आए हैं, और हमारे पीछे जो लोग हैं, यानी जो हम अपने पीछे अपनी कौम को छोड़ के आए हुए हैं, हम इनके लिए पैगाम सुलह हैं, यानी हम उनकी तरफ से भी हम आपके पास ये वो सुलह का पैगाम वो भी रखते हैं आपके लिए। इस पर अल्लाह ताला ने फिर आयात उतारी थी सूरह हुजरात में कि वो तुम पर एहसान जताते हैं कि मुसलमान हो गए, तुमको मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान ना जताओ, बल्कि अल्लाह तुम पर यह एहसान जताता है कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी है। ये अल्लाह का तुम पे एहसान है कि तुम अल्लाह के ऊपर एहसान जता रहे हो कि देख लें हम हो गए ना फिर मुसलमान, देख लें फिर हमने इस तरह किया, तो ये दुरुस्त रवैया नहीं। अगर अल्लाह ताला किसी नेकी की तौफीक देता है तो उसके ऊपर अल्लाह के एहसान मंद हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ना कि बड़बड़ के देख लिया हमने तो ये किया है ना, देखा है आपने तो कहा भी नहीं था हमने ये किया, तो किसी इंसान के ऊपर एहसान नहीं होता ये। हम बड़बड़ के बाद दफा अपने कामों का जिक्र करते हैं और कहते हैं देखिए हमें हमें किसी ने सिखाया भी नहीं, देख लिया फिर मैंने कैसा किया, फिर देखो मैंने ये शानदार काम मेरा, देखे आप कि किस तरह का, ये इसकी क्या जरूरत, तुमने अल्लाह के लिए किया और अल्लाह ताला को पता चल गया और अल्लाह का एहसान है कि उसने तुमसे कोई भलाई का काम ले लिया। तो उन्होंने जाहिलियत के कुछ कामों के मुतालिक पूछा, मसलन फालगिरी के लिए चिड़िया बगाना, यानी वो लोग क्या करते थे, कोई काम करने लगते थे तो उसके लिए चिड़िया उड़ाते थे कि चिड़िया दाएं तरफ उड़ गई तो काम कर लेंगे, नहीं बाएं तरफ चली गई तो नहीं करेंगे। कहानत करना, अगेन फॉर्चून टेलिंग जिसको कहते हैं, किस्मत का हाल पूछना, कहानत फॉर्चून टेलिंग, आगे आगे मतलब बातें कि किस तरह से होना चाहिए, इसका बिजनेस कितना आज के दौर में इन है, बल्कि ये कोई आपके मैच वगैरह होते हैं तो आज के वक्त में भी ये तो चिड़िया उड़ाते थे ना, और या फिर आगे आया कंकरी मारना, तो आज के वक्त में भी कभी वो दिखा रहे हैं कि खबरों में दिखाते हैं कि वो कभी किसी हाथी को ले लेते हैं, कभी कोई गेंडा ले लेते हैं, कभी कोई कुछ कोई कुछ कभी कोई पता नहीं एक और चीज थी जिससे वो देखते हैं कि इसने जिस चीज को छू लिया, हाँ शेर भी है उसमें, पता नहीं चिड़िया भी हैं, तोते तो पहले ही थे, जो भी ये जानवर हैं ये इसको हाथ लगा लेंगे तो ये टीम जीतेगी, उसको हाथ लगाएंगे तो ये टीम जीतेगी। ये कैसे जी, यानी जानवरों को आप इस तरह कर रहे हैं कि उनको इल्मे गैब है, वो भी कोई चीज को जानते हैं, ये तो उस जमाने के लोग किया करते थे ये चिड़िया उड़ाने का काम, और इस तरह हमने तोते से शुरू किया और फिर हर जानवर को ही ले लिया, और फिर उसके अलावा ये आप देखें कि ये हाथ देखने का काम कितना ज्यादा आजकल वो है कि हाथ देखे जाएं, और वो बहुत तरह की चीजें आ गई हैं। उन्होंने रमल के मुतालिक पूछा तो हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बातों से मना किया, हम मुसलमान होके ये करते हैं। रमल का पूछा उन्होंने, रमल में भी क्या होता था, नीचे वो लकीरें खींचते थे जमीन के ऊपर और उसे हिसाब किताब लगाते थे, आज भी खुद मैंने देखा लोगों को ये इस तरह पेजेस के ऊपर कॉपियों के ऊपर ऐसे से लकीरें खींच खींच के डब्बे बना बना के और फिर लोगों को बताते हैं आपकी किस्मत का हाल। आपने फरमाया इसे एक नबी जानते थे, आप अगर किसी का इल्म उस नबी के मुताबिक हो तो ठीक है वरना नहीं, यानी एक नबी को इसका पता था और उसके अलावा किसी को नहीं ये इल्म, और ये बात तय है कि अब मुताबिकत का जानना महाल है, यानी ये लकीरें खींच के जो बता रहे हैं ना कि इसके मुताबिक तुम्हारी किस्मत होगी और ये इससे रिलेटेड है, ये इससे, ये सारे आमाल गैब में अंदाजा लड़ाने के सिवा कुछ नहीं है, यानी ऐसे ही गैब के अंदर इधर से जिसको कहते हैं अंदाजे लगा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा साथ ऐसा हो जाएगा, ये अच्छा है तुम्हारे लिए ये बुरा है, ये सिर्फ अंदाजे हैं। इस वक्त ने चंद दिन ठहर कर फराइज सीखे फिर वापिस हो गया, इसे तहाइफ से भी नवाजा गया। अब देखें वो लोग आके कुछ सीखते थे फिर उसके बाद वो वापस जाके अपने लोगों को सिखाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं उनको फरमाया था तुम कैसे सिखा सकते हो, तुम तो अभी खुद थोड़ा सा सीख के जा रहे हो तो खबरदार तुमने से किसी ने सिखाया। आज तो ये बहुत बड़ा वो मसला है ना कि जब तक आपके नाम के साथ एक आलिम या आलिमा का लफ्ज नहीं लगा होगा, आप किसी को एक हर्फ भी नहीं सिखा सकते। अगर सिखाएंगे तो ये तो पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी। और देखिए, वो जितना इल्म किसी के पास है, अगर उनके पास फराइज का इल्म होता तो वो ही जाके अपने ट्राइब्स में बताते थे। और किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। चंद दिन रहने से उनको कितना उन्होंने सीख लिया, वो खुद बताएं कितना इन्होंने डिग्रियां ले ली होंगी। हमें कहा जाता है कि साल हर साल जब तक आप मदारिस में ना पढ़े तब तक आप कुछ बताएं ही नहीं, ये कैसी बात है? ठीक है, आपको फतवे देने को नहीं कहा जा रहा, मगर जितना इल्म है उतना तो आगे पहुंचाओ ना। फिर आगे ये तजीब का वक्त है। तजीब कबीला किंदा की एक शाह है, और ये किंदा की भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। किंदा एक कबीला था, उसी की एक शाख थी। किंदा वाले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, और इनकी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहती वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब इन्होंने किया, आपने उनको बताया जो भी था, और फिर आपने फरमाया क्या तुम इस्लाम नहीं लाओगे? वो बोले बला क्यों नहीं, हम जरूर इस्लाम लाएंगे। आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए, आपने हमें मुतमईन कर दिया, हम क्यों नहीं इस्लाम लाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे देखा होगा तो आपने फरमाया, ये क्या है, ये रेशम का कपड़ा तुम्हारी गर्दनों में। सुभान अल्लाह, वो ऐसे लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसी वक्त अपनी गर्दनों से वो कपड़ा उतारा, फाड़ा और फेंक दिया। अरे ये कितने समय ना आता, यानी सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ये नहीं फरमाया कि ये रेशम तो हराम है, ये क्यों है, बस उन्होंने उतनी बात से ही भांप लिया कि अच्छा ये सही नहीं है, फौरन फेंक दी। जो नए नए अभी मुसलमान हो रहे हैं, जो ही उनको ये बात समझ आती है कि नहीं ये लगता है सही नहीं है जो हमें इस तरह से पूछा जा रहा है, फौरन लब्बैक कहा। क्योंकि इस्लाम के अंदर ये आपको पता है ना, रेशम हराम है, मर्द के लिए सोना हराम है, इवन ज्वेलरी पहनना आदमियों के लिए सही नहीं है, वो औरतों के लिए होती है जेवरात जो है। मर्द बालियां नहीं पहन सकते, मर्द चेन्स नहीं पहन सकते, ब्रेसलेट्स नहीं पहन सकते, फिर भी आज कितने ही लोगों ने पहने हैं। ओके, ये औरतों से मुशाबहत है, सिर्फ मर्द को अंगूठी पहनने की इजाजत है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी है, इसके अलावा कोई चीज नहीं इजाजत। मगर कितने लोग हैं जो ये बात सुन के कि सुभान अल्लाह किंदा कबीला कितना जबरदस्त था, उन्होंने फौरन समय ना बताना का। कितने लोग इनकी ये बात सुन के अपनी चेन्ज उतार दें और आज कहें कि ये ब्रेसलेट और ये आज आज के बाद नहीं पहनूंगा। ओके, जो जैसे उनकी उनको अल्लाह ताला ने यानी कितना बड़ा एक शर्फ दिया कि उन्होंने बस बात को भांपा और अता ना किया, तो ऐसे ही अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मैं इस तरह समय ना अता ना करूँ। और आप देख रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी जा रहे हैं उनको तहाइफ दे दे के भेज रहे हैं। तो ये जो तजीब कबीला था, ये किंदा की एक शाख था, ये लोग अपनी कौम के वो सदकात जो इनके फुकरा से बच रहे थे लेकर आए, आप अपने फुकरा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे सदकात, लेकिन जो बच गए उनको ऐसे नहीं कि आपस में ही खा पी ले। जकात जमा हुई है बैतुल माल में, हमारे यहाँ जकात जमा होती है, वो किधर किधर लगती रहती है, अगर वो सही जगह पर लगे, देने वाले सही से दें और लेने वाले भी सही जगह खर्च करें, तो कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब ना रहे। लेकिन वो लोग खा लेते हैं, तो उन्होंने सारे फकीरों में बांट के उसके बाद तो ऐसे होते तो कहते कि अब तो कोई बच ही नहीं गया, तो खुद ही खा लो, खुद ही अपनी जेबों में डाल लो। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो ये सदकात बच गए थे ना, वो लेकर आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सो ऑनेस्ट ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे खुशी हुई और आपने उनका एजाज और इकराम किया, आपने उनको इज्जत दी कि ये कितनी जबरदस्त बात उनके कैरेक्टर की है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हमारे पास इस जैसा अरब का कोई वफद नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसका सीना ईमान के लिए खोल देता है। मैंने आपको किंदा की भी बात बताई ना, ये उसी की शाख है। तो सुभान अल्लाह, एक कबीला कितना जबरदस्त था कि वो कैसे थे, वो अपने सदकात भी ले आए। और फिर मतलब अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं कि ऐसा कोई और वफद है ही नहीं जैसे ये थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को हाईलाइट कर लें कि हिदायत अल्लाह के हाथ में, वाकई अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहे अल्लाह, जिसके साथ खैर का इरादा करे उसी को इरादा दिखाता है, कोई कहाँ जा रहा होता है और किस तरह अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ ले आता है, उसका सीना ईमान के लिए खोल देता है, उसको ने शायद कभी सोचा भी नहीं होता। ये लोग कुरान और सुन्नतों को पूछते और सीखते रहे, सुभान अल्लाह, कि उन्होंने अपने दिन वेस्ट नहीं किए कि अब हम यहाँ पे आ गए, मेहमान बन के बैठे रहे, हमारी खातिर तवाजो होती रहे, थोड़ा सैर सैर वैर कर रहे हैं, सारा दिन घूम फिर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं वहां पे कुछ भी नहीं होता था? वो बस बैठे रहते थे वहां पे और कुछ नहीं, वहां पे भी बाजार थे, वहां पे भी घूमना फिरना हो सकता था, वहां पे भी इधर बैठ गए उधर बैठ गए बातें हो सकती थी, टाइम वेस्ट हो सकता था, लेकिन वो जितने दिन वहां पे रहे कुरान सीखते रहे, सुन्नतों को पूछते रहे और सीखते रहे, पूछ पूछ के सीखना, सुभान अल्लाह। ये वही कर सकता है जो इल्म का प्यासा हो, जिसको तलब हो कि मैं जितने दिन यहाँ पे हूँ मैं कुछ सीख जाऊं। उन्होंने गपशप में नहीं दिन गुजार दिए, फिर वापसी का इरादा किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अफजल तरीन तोहफे दिए, सुभान अल्लाह, और पूछा कोई आदमी बाकी रह गया? उन्होंने बताया एक लड़का हमने डेरे में छोड़ रखा है। डेरा क्या होता था कि जब जैसे शहर है ना, तो कोई काफला आता था अगर शहर में आने वाला है, तो वो शहर से बाहर ही अपने ऊंट अपने सामान अपने यानी सवारियां वगैरह और अपने सामान वगैरह वहीं रखते थे, अपने खेमे वहां पे करते थे और फिर शहर के अंदर आ जाते थे, और वहां पे कोई किसी को निगरान बना के छोड़ आते थे। क्योंकि जाहिर आप शहर में आकर तो अपने खेमे नहीं लगा सकते, तो वो शहर में जो भी काम होता था कर वर के वहां चले जाते थे, फिर अपना सामान और सवारियां लेके खेमे उखाड़ के निकल जाते थे वापस। आपको याद होगा हजरत उमर की, जब आप जिंदगी का पढ़ते हैं खिलाफत का दौर, तो हजरत उमर कैसे शहर से बाहर जाके लोगों को रात में गश्त किया करते देखा करते थे। वो यही वो लोग थे, यही डेरे थे, ये जो मुसाफिर लोग आए हुए हैं बाहर रह रहे हैं, उनको तो नहीं कोई चीज की जरूरत है, उनकी तो नहीं कोई तकलीफ है, तो ये उनका डेरा होता था। उन्होंने कहा कि हाँ देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखे हिकमत भी, कि कोई बाकी तो नहीं, कोई तुम्हारा रह गया? वो कहने लगे कि हाँ एक लड़का है, तो हमने उसको डेरे में छोड़ रखा है, वो हमें सबसे कम उम्र है, छोटा लड़का, वो पीछे छोड़ दिया, चलो तुम यहाँ बैठो सामान वगैरह के साथ हम जाते हैं। तो आपने फरमाया उसे भी भेजो। वो आया तो अर्ज करने लगा ए अल्लाह के रसूल, मैं इसी जमात से हूँ जो अभी आपके पास आई थी, आपने उनकी जरूरत पूरी कर दी, अब मेरी भी जरूरत पूरी कीजिए। आपने पूछा तुम्हारी जरूरत क्या है? उसने कहा आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम करे और मेरे दिल को गनी कर दे। सुभान अल्लाह, यानी कितनी प्यारी, वो कम उम्र लड़का है लेकिन उसने कहा कि उन्होंने तो अपनी जरूरतें ले ली, उनके पास तहाइफ भी उनको दिए गए बेश कीमत, उनको और चीजें उन्होंने की, मेरी भी जरूरत पूरी करें, मुझे ये दुआ दे दे। कितनी खूबसूरत बात है, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर दे और मेरे दिल को गनी कर दे, यानी मेरे दिल को ना अब ये चीजों का या माल का या इन चीजों का नहीं, मेरे दिल में ऐसी कनात हो। दिल भी एक मालदार होता है ना, बाज दिल गरीब होते हैं, वो दिल ऐसे गरीब होते हैं कि उनके पास कितना भी माल आ जाए दिल भरता ही नहीं कभी, वो गरीब दिल। और बाद दिल ऐसे होते हैं थोड़ा भी होता है तो कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल मालदार होता है उनका, उनको ये नहीं होता हाय फलां के पास भी इतना हो गया, फलां के पास भी हो गया, हमारे पास कुछ नहीं, उनका दिल मालदार है। अल्लाह मेरे दिल को गनी कर दे, ये दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मतलूबा दुआ कर दी, यानी जो उसने मांगा था जो उसने तलब किया था वैसी दुआ कर दी, और दूसरे साथियों जैसे तोहफे का हुक्म दिया, तोहफे भी मिल गए दुआ भी मिल गई, सुभान अल्लाह, जो नसीब में मिलता होता है वो तो मिल ही जाता है। असल बात यह कि इंसान इससे ऊपर की चीजों को तलब करे, तो चुनाचे सबसे ज्यादा कनात पसंद इंसान हुआ। कनात क्या होती है? कंटेंटमेंट, कि बस जो मेरे पास है उस पर राजी हो जाना, हर वक्त हविस ना होना, इससे अच्छा मिल जाए, उससे अच्छा मिल जाए, उससे आगे उससे आगे नहीं, कभी तो हमारे अंदर कनात आए ना कि बस मैं इस पे राजी हूँ जितना मुझे मिल गया, मैं दीन में आगे बढ़ू ना कि इन चीजों के अंदर ही मैं हिर्स करती रहूं कि मुझे बस बेस्ट उससे बेस्ट, वो तो कभी लिमिट ही नहीं। तो जमाना इर्तदाद में, जमाना इर्तदाद कौन सा था? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई उसके बाद बहुत सारे कबाइल मुर्तद हो गए, तो वो जमाना इर्तदाद का था। जमाने इर्तदाद में ना सिर्फ इस्लाम पर साबित रहे ये जो सहाबी हैं, बल्कि अपनी कौम को भी बाजू नसीहत की, चुनाचे वो भी इस्लाम पर साबित रही। नहीं, वो सच जैम के उन्होंने अपनी कौम के लिए भी कितने अच्छे साबित हुए ना, तो बात वहीं पे आ गई ना फिर, कि अपने खानदान के लिए सबसे अच्छा कौन है जो उनकी आखरत की भलाई का सोचे। तो वो उस जमाने में जब लोग इस्लाम से फिर रहे थे, गो के वो सबसे यंगेस्ट थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का भी असर था, उनकी अपनी भी तलब यही थी। देखें फिर कनात वाले भी थे, और अल्लाह ताला जिस पर रहम करे तो फिर वो कैसे फिर सकता है इस्लाम से। तो वो अपनी कौम को भी स्टेबल रखने में उन्होंने किरदार अदा किया था कि उनकी कौम भी कहीं फिर ना जाए। यहाँ तक आज का सबक देख लेते हैं, चूंकि हमने बहुत अरसे से नहीं क्लास हुई थी, तो हर दफ़ा बहुत थोड़ा हो रहा था। आज उम्मीद आप थक नहीं गए होंगे, आज थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी क्लास 1 o'clock पे शुरू करेंगे, इंशाल्लाह ताला 1 बजे हम अपनी क्लास शुरू करेंगे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, क्योंकि नमाज का जोहर का भी टाइम पीछे आ रहा है, तो फिर जोहर हम पढ़ के इंशाल्लाह क्लास के लिए बैठेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।